और अभी ये हमारा पैनल डिस्कशन है और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मुकेश भाई जी को। एक बार जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे मुकेश भाई जी इस ज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को पिछले लगभग 28 वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग डिवीजन JCRC फाउंडेशन जयपुर। और जो आपने कल थॉट लैब के बारे में जाना तो उसके हेड भी हैं जो कि जयपुर में इस्टैब्लिश है और ये थॉट लैब फर्स्ट जो इस्टैब्लिश हुई थी वो जयपुर के JCRC कॉलेज में हुई थी और उसके जो निमित्त बने थे वो हमारे मुकेश भाई जी बने थे। तो एक बार जोरदार तालियों से हम भाई जी का अभिनंदन करते हैं और भाई जी से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज का हमारा पैनल डिस्कशन है और जो हमारे गेस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, उनको आप स्टेज पर बुलाएं। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति। आज का टॉपिक है क्रिएटिंग द फीलिंग्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार है, इस प्रकार की भावना हम अपने दिलों में, अपने एजुकेशन सिस्टम में कैसे जगा सकते हैं, इस चीज पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज बड़े विद्वान लोग साथ में हैं। और सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ में डॉक्टर अविचल कपूर जी हैं। डॉक्टर अविचल कपूर जी, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। आपने बहुत एजुकेशन सिस्टम में जो है, जो AICT और UGC को शायद सारी दुनिया जानती है, कम से कम भारत में, तो आप UGC के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी, बहुत लोगों ने शायद नाम सुना होगा, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे, NEP कितने लोग जानते हैं? करीब करीब सारी सभा NEP के बारे में जानती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम आमंत्रित करते हैं अविचल कपूर सर को। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश में आई, उस नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी आपका एक बड़ा योगदान है, साथ साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट और AICT में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा आप में से कितने लोग जानते हैं NBA के बारे में? NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनको NBA के प्रोसेस से गुजरना होता है ना, एक ऑडिट एजेंसी है AICT और UGC की तरफ से। तो ये जो NBA है, NBA के रूल्स फ्रेम करने में भी आपकी महती भूमिका रही है। और इसके अलावा NIRF रैंकिंग को कौन कौन जानता है? जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग होती है ना, हर इंस्टीट्यूशन को एक रैंक किया जाता है, उसके जो पैरामीटर्स का डिसीजन, उस कमेटी के भी आप उसमें भी आपका एक बड़ा रोल रहा है NIRF का फ्रेमवर्क बनाने में। साथ साथ आप IEEE और IST, मेरे ख्याल से इसमें भी लोग जानते हैं IEEE IST, आप उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। बिट्स पिलानी से आपकी एजुकेशन रही है, वैसे तो आपका और परिचय बहुत लंबा है, आज के इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के, इस पर्टिकुलर पैनल डिस्कशन के आप हमारे चेयरपर्सन भी हैं, तो आपका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। अभी हम आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ में हैं BK गीता दीदी, ब्रह्मा कुमारी से गीता बहन जी हैं और गीता बहन जी मात्र 17 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी इसमें समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं। 14 साल की उम्र में वो इस ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई और 17 साल की उम्र, बहुत छोटी आयु से, और मुझे जहां तक लगता है लगभग 50-60 वर्षों से ज्यादा से आप ब्रह्मा कुमारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी में एक टीचर एजुकेशन, जो ब्रह्मा कुमारी में टीचर्स बनती हैं, बहनें आती हैं, उनका एजुकेशन में भी आपका एक बड़ा रोल है, उनको टीच करने के लिए भी आप सीनियर राजू का शिक्षिका हैं। आप लोग डेली मॉर्निंग में एक कोर्स होता है, मॉर्निंग में 6 से 7 चलता है या 7 से 8 चलता है, आप लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपने सोल के बारे में पढ़ा होगा, सुप्रीम सोल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आप उनकी भी एक सीनियर टीचर हैं और पूरे माउंट आबू हेडक्वार्टर में इस तरह के कोर्सेज आप लेती हैं। आपका एक और विशेषता आपकी है, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन की अनेक परिस्थितियां हों, कैसी भी हों, आप अविचल रहती हैं, सम रहती हैं, समानता आपके जीवन में है। गीता के इस महावाक्य को आपने जीवन में अच्छे से ढाल लिया है। ऐसी महान और श्रेष्ठ विभूति आज हमारे साथ में है, हम गौरवान्वित हैं आपका साथ पाकर। अभी हम आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ में हैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी। जो भूषण दीवान सर हैं 1971 वार वेटरन भी हैं, इंडियन नेवी में रहे हुए हैं और जहां तक मैं ठीक समझ रहा हूं इंडियन नेवी की एक वॉर शिप थी कृष्णा, और कृष्णा पे आप 1971 में डेपुटेड थे। 3 दिसंबर 1971 को जो लड़ाई लगी थी भारत और पाकिस्तान, उसमें कराची के आसपास के, आपने मूवीज में भी देखा होगा, कराची के आसपास जो ऑपरेशंस थे उन ऑपरेशंस में भी आपने पार्ट लिया था। आपका भी हम आमंत्रण करते हैं इस सभा के अंदर। आप टीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ऐसा ही नहीं है कि आर्मी में आपका दखल है। आर्मी के साथ साथ यदि टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी आप नाम जानते हैं, उसमें भी आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। साथ साथ 3 यूनिवर्सिटी के आप पास्ट में वाइस चांसलर रह चुके हैं और वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में हैं, उसके एडवाइजर भी हैं। और ह्यूमन राइट्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस विषय पर आपकी पीएचडी भी है, आपकी महारत भी है। सो वेलकम डॉक्टर कमांडर भूषण दीवान सर का। अच्छा, अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारे चौथे फोर्थ पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं डॉक्टर जयदीप निकम सर का, जो डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस यशवंत राव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के, महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत सारे लोग हैं वाईसीएमओयू का नाम आपने सुना होगा, करीब करीब सबने सुना है। 6 लाख के लगभग स्टूडेंट वाईसीएमओयू में हैं, देश की, ये मुझे पता नहीं सबसे बड़ी, लेकिन देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आप डायरेक्टर हैं कंटिन्यूइंग स्कूल एजुकेशन के। और आपका जो भूगर्भ विज्ञान है उस पे आपकी महारत है और उस पे भी भूजल पे आपने काफी काम किया है, भारत के बाहर अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के कुछ महाद्वीप, अफ्रीका के कुछ देशों में आपने काम किया है और महाराष्ट्र के 35 गांवों के अंदर जल संरक्षण और वाटर क्राइसिस पे बेहद अच्छा काम किया। आज भी यदि वहां जाएंगे तो लोग इनको एक अच्छे नाम और सम्मान की दृष्टि से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक विशेष गांव की सेवाओं के लिए काम किया है। तो आपको भी हम आमंत्रित करते हैं आज की सभा में। तो ये तो थे हमारे, हैं हमारे पैनलिस्ट। आते हैं हम अपने पॉइंट पर, हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। अब संस्कृत से तो हमारा इतना ही नाता है, वसुधैव कुटुंबकम को हम ये समझते हैं कि विश्व एक परिवार है ना, तो हमें फीलिंग क्रिएट करनी है दुनिया में, आपस में, शिक्षकों में, स्टूडेंट्स में, कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। पर जितना मुझे ये टॉपिक समझ आया, लेकिन हमारे महान पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं, तो सबसे पहले हमारे चेयरपर्सन सर अविचल कपूर जी से हम जानना चाहेंगे कि क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम क्या इस टॉपिक का अर्थ है। अच्छा, हमारे अविचल सर इस पॉइंट पे आगे बढ़ें, उससे पहले हम एक बार हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारे सभी पैनलिस्ट को वेलकम करें, पुष्पों के द्वारा, तिलक के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। जयदीप निकम सर, डॉक्टर जयदीप निकम सर, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर,
पर बैठे सभी सम्माननीय फेलो पैनलिस्ट और सभागार में उपस्थित सभी माननीय गण, आप सभी को नमस्कार। एट द आउटसेट, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर मी इन पर्सन फर्स्ट टू चेयर दिस पैनल डिस्कशन एंड टू सेकेंड पार्टिसिपेट इन सच ए वंडरफुल कंटेंट वाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज कॉन्फ्रेंस वेयर वी आर लुकिंग एट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन। पिछले 2 दिन में जिस तरीके से बहुत से विषयों को और विषयों में विचारों को और विचारों को एविडेंसेस के साथ सपोर्ट करते हुए जस्टिफिकेशंस को रखा गया, मुझे लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जो चाहे वो किसी भी फील्ड में एक ह्यूमन बीइंग हो, उसको इस सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही होनी चाहिए। उसी पेरिफेरी में आज के पैनल डिस्कशन का जो टाइटल रखा गया, क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ वसुदेवाय कुटुंबकम, जैसे कि हम सभी जानते हैं ये जो दो वर्ड्स हैं वसुदेवाय, वसुदेवाय का संस्कृत से लिए गए हैं जिसमें इसे अर्थ कहा जाता है, भारत माता कहा, धरती माता कहा जाता है। जो वसुदेवाय में वाय है वो इम्फेसिस है और कुटुंबकम एक परिवार है। इसका मीनिंग ये है कि पूरा भारत, पूरा संसार एक परिवार है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग जानते हैं जो भारत सरकार ने या भारत देश ने पिछले साल G20 का ऑर्गेनाइजेशन किया, उसका भी थीम यही था, वसुदेवाय कुटुंबकम। उसमें तीन चीजें थी, वन अर्थ, वन फैमिली और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई थी, वन फ्यूचर। हम सब एक हैं, हम सब इस संसार के एक साथी हैं और हम सबका भविष्य एक है। इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए जो हमने तीन दिनों में देखा कि धरती हम सबकी है, हम सबका समान अधिकार है, हम सब एक हैं, हम सब सोल हैं, उन सोलों को कनेक्ट होना है। और इसको एक टर्म में डिफाइन किया गया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं वो इसमें जानते हैं, और ये परिसर ऐसा है जिसमें नींव ही इसी सब्जेक्ट की रखी जाती है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो इस थीम से कनेक्ट होता है। व्हाट इज, व्हेन वी से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एट द इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप्स, और इन सारी चीजों में को एग्जिस्टेंस, इकट्ठा रहना, तीन चीजों की तरफ आउटकम रखता है, जिसको हम कॉमन गोल कहते हैं। एक वर्ल्ड कम्युनिटी में हार्मोनी, एम्पैथी एंड कॉपरेशन, ये तीन चीजों के साथ इस कम्युनिटी को वर्ल्ड की कम्युनिटी बनाते हुए, हम कहीं भी रहें, अगर हम एग्जिस्टेंस में हैं तो हम उस कम्युनिटी का पार्ट हैं। हम इस वर्ल्ड को एक परिवार में किस तरीके से देखें, और देखते समय, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस हैं, हम कैसे इस परिवार की संरचना करें और अपने शिक्षा का पार्ट बनाएं, हमारे एजुकेशन का एक कंपोनेंट ये किस तरह से बने कि हम कहीं से निकलें, कहीं से पढ़ें, कहीं शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन हमारे विचारों में समानता, हमारे गोल्स को देखने का तरीका और गोल्स का डिफाइन करने का तरीका एक हो, और उस गोल को अचीव करने का रास्ता भी जो है उस रास्ते में हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हों और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। इसी थीम के साथ आज का पैनल डिस्कशन रखा गया है और आगे भी बातें होती रहेंगी। तो इन शुरुआती विचारों के साथ अब मैं सबसे पहले दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्गदर्शन करें हमारे पैनल डिस्कशन में, और फिर हम एक एक करके बहुत से सब्जेक्ट जो इससे कनेक्ट हो रहे हैं हम आपके पास वापस आएंगे। धन्यवाद।
ओम शांति, ओम शांति के महामंत्र से आरंभ हुई और विश्व शांति का कार्य करने वाली संस्था ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी पधारे हैं और हम सब बैठे ही हैं हार्मनी हॉल में। हमारी आपस में विविधता में एकता वाला ये देश है। यहाँ की भूगोल चारों ओर अलग अलग है, हवा पानी जमीन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर एक धर्म वाले जाति वाले भाषा वाले संस्कृति वाले इस देश में सब रह रहे हैं। ये देश और इसकी जो प्राचीन संस्कृति है, देवता संस्कृति, जिसका आधार आध्यात्मिकता है, और इस देश में आज तक भी बहुत अच्छी रीति से मेल मिलाप से सभी रह रहे हैं। इस देश ने कभी भी और देश पर आक्रमण नहीं किया है, यही बताता है कि हमारी प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति के जो सूत्र रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ रहे हैं, जिसके कारण आज तक भी ये यहाँ मेल मिलाप से चल रहा है। जब ये ज्ञान सरोवर बना और इस हॉल का नाम दादी जी ने रखा तो यही भावना दादी की रही कि हार्मनी माना समरसता संवादिता मेल मिलाप से हमें चलना है। तो दादी ने एक प्रैक्टिकल विधि हमें सिखाई कि आपस में जब कभी भी वाद विवाद हो तो आप खुद ही पहले हार मान लो और दूसरे के विचार को मान दो। जब हम हार मान लेंगे और दूसरे को कहेंगे कि आपका विचार ठीक है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम डिबेट करते रहेंगे, वाद विवाद करते रहेंगे तो हमारा आपस में मिलाप नहीं होगा, संस्कार मिलन की रास नहीं होगी। यहाँ जो भी समर्पित होते हैं, एक एक कैंपस में पूरा भारत है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, यूपी भी है, दिल्ली पंजाब हरियाणा भी है, हिमाचल के भी लोग हैं, आंध्रा के हैं, कर्नाटक तमिलनाडु केरला के भी हैं, सब तरफ के लोग हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं, आसाम के भी हैं, हर प्रांत के लोग यहाँ समर्पित हैं। तो दादी ने हमें पहले ही ये सिखाया, इस विद्यालय में जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो दादी ऐसा करती थी कि उस डिपार्टमेंट वाले सबको बिठाते थे और जिसका बर्थडे होता था सबको कहते थे कि आप इनके गुण बताओ, उनकी विशेषता बताओ। तो जब उनके गुणों का वर्णन होता है तो वर्णन करने वाले को भी अच्छा लगता है, उसके प्रति अच्छी फीलिंग आती है और जिसका बर्थडे है उनको भी उनके प्रति शुभ भावना होगी। तो अगर हम एक दो के गुण देखेंगे, विशेषता देखेंगे, तो हमारे मन में नेक्स्ट फीलिंग क्या आएगी, हम कोऑपरेटिव बनेंगे, हमारी आपस में यूनिटी बन जाएगी। अगर हम अवगुण चित्त पर रखेंगे तो हमें असहयोग करने का मन होगा, हम नफरत करेंगे, मिलके नहीं चलेंगे। इसलिए हमारा फाउंडेशन शुरू से ही दादियों ने ऐसा डाला कि यहाँ हमें कोई जाति ज्ञाति नहीं रखनी है। अपना नाम जो है ब्रह्मा कुमारी गीता बहन या ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई, हमें और कोई जाति ज्ञाति सरनेम वर्णन नहीं करनी है। इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि सभी ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम से ही परिचित कराए जाते हैं, और इसके कारण हमें पता ही नहीं होता है कि कौन किस ज्ञाति का है या जाति का है। आज पूरा समाज विभाजित हो गया है बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। हम अपनी वास्तविकता, अपना रियल परिचय भूल गए हैं। इसलिए हमारा प्रथम पाठ ही आत्मा का परिचय है। आज सुबह आपका जब शिविर शुरू हुआ तो मॉर्निंग प्रथम लेसन ही आत्मा का चला होगा। तो हम सब आत्माएं हैं, एक ही परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और एक ही परम धाम के हम निवासी हैं। हम सबका स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम सबका स्वधर्म शांति और पवित्रता है। हम सबके मूल गुण शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शांति और शक्ति है। अगर हम अपने इन अनादि गुणों को इमर्ज करके जितना आत्म स्वरूप का अभ्यास करेंगे, हम इन गुणों का स्वरूप बनेंगे और इन गुणों में स्थित हो करके कार्य करेंगे, तो हमारा हर कार्य श्रेष्ठ होगा। हम सबके मन में एक दो के प्रति अपनेपन की फीलिंग आएगी, आत्मा आत्मा भाई भाई का भाव रहेगा और हमारा एक दो से व्यवहार भी श्रेष्ठ और सुखदायी बनेगा। तो अवश्य ही आध्यात्मिकता का ये पहलू हमें बहुत ये आंतरिक भावना उत्पन्न करने में मदद करेगा। ओम शांति।
बहुत खूब। वसुधैव कुटुंबकम की जो गहराई आपने दी है कि हमारा भाव आत्मिक हो और आत्मा के मूल गुणों के हिसाब से हम एक दूसरे से व्यवहार करें, और साथ साथ जैसा अविचल सर ने भी कहा कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे गोल और हमारे रास्ते यदि एक बनते जाएंगे, विचार मिलते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम विश्व एकता की तरफ या वसुधैव कुटुंबकम की तरफ एक परिवार मानते हुए आगे बढ़ने लगेंगे। बड़ी खूबसूरत डिस्कशन आगे बढ़ रही है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं कमांडर भूषण देवान जी से, और आप सबको पता है आप नेवी में रहे हैं। तो एक प्रश्न हमारा आपसे ये है, क्या इस संसार में वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्थापित की जा सकती है बाहुबल से? क्या आर्मीज की संख्या को बढ़ा करके, ये भी एक जरूरी पार्ट हो सकता है, आप इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें कि एक रास्ता बाहुबल वाला रास्ता भी है वसुधैव कुटुंबकम की, ये भी एक जरूरी पार्ट है, पर इसके साथ भी कुछ और चाहिए या दिस अलोन विल कंप्लीट, ये अपने आप में एक विश्व के परिवार की भावना को स्थापित करने में सफल तथ्य है बाहुबल?
ओम शांति। पहले तो आज लास्ट दिन है और हाफ डे के बाद सेशन नहीं है, तो और कई एस्केप डोर्स के पास भी बैठे हुए हैं कि जैसे गर्मी हो तो निकल जाए यहां से, और बड़ा अच्छा किया बीके चित्रा ने, अलाइव अलर्ट अवेक एंथुजियास्टिक, तो सब लोग जाग गए, नहीं तो हमारा काम बड़ा मुश्किल हो जाता। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जो है, वसुधा हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, वह मतलब पृथ्वी,
वसुधा माने पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही परिवार है, ये हमारा परिवार है। पर एक चीज मुझे ख्याल आती है, ये कलयुग का जो परिवार हमारा है, कलयुग का जो परिवार है हमारा, क्या ऐसा परिवार बनाना है? कलयुग का परिवार कैसे है? मैं आपको उदाहरण दे, छोटी सी बात कहता हूं। मैंने मन में सोचा एक संगठन खोला जाए, संस्था खोली जाए, समाज खोला जाए, जिसका नाम है पीपीएस। तो मैं मिला दोस्तों को, मैंने कहा भाई पीपीएस खोलते हैं। कहते पीपीएस क्या है? आपके हिसाब से क्या है पीपीएस? मैंने कहा पहला पी तो पीड़ित कह लीजिए या पुलकित कह लीजिए, पीड़ित या पुलकित, और दूसरा पी पति या पत्नी, और लास्ट में संगठन। अब आपके मन की श्रद्धा के हिसाब से पतित क्या, पीड़ित पति संगठन, पीड़ित पत्नी संगठन, या पुलकित पति संगठन, जो भी है आप कर लीजिए। मेरी संग तो मैं मुझे पूछना चाहता हूं, यहां तो आदमी बहुत कम है, तो हिम्मत ही नहीं बोलने की कि पीड़ित पति संगठन बन जाए, हिम्मत है? मुश्किल है कहना, राइट? एनीवे, सवाल यह है, मैं कल एक देख रहा था फेसबुक पे, वो एक पत्नी पति से कह रही है, पति पत्नी से कह रहा है, भाग्यवान तुम रात को नींद में मुझे गाली दे रही थी। पत्नी कहती है तुम्हारी गलतफहमी है। तो क्या गलतफहमी है? मैं सोई हुई नहीं थी। दूसरा एक संदर्भ आता है, छोटी सी कहानी है, वो पत्नी आके पति को डांटने लग गई। ये मैं कलयुग की परिवार की बात कर रहा हूं, कुटुंबकम, कुटुंबकम। तो हमारा विजन क्या है? तो विजन ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे आगे जाएगा, और हम लोग बनाने वाले हैं। तो दूसरा था वो पत्नी आए पति को डांट रही है, तुम्हारा वो नीचे वाली से कोई चक्कर है, क्यों ऐसा पूछ रही हो? अरे कल वो लड़ाई की आवाज आ रही थी पड़ो नीचे के फ्लैट से, बॉम्बे वगैरह में फ्लैट होते, मैं बॉम्बे का हूं, तो वो पत्नी पति से कह रही थी तुम मेरे को तंग मत करो, ऊपर वाला मेरे साथ है। तो ये है, इतना हमारा आपस में विश्वास है, अटूट विश्वास आपस में है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वॉयलेंस तो किसी चीज का आंसर ही नहीं है, वॉयलेंस तो लॉन्ग टर्म हो नहीं सकता है। बाबा रामदेव, आयुर्वेद, राजयोग, ये तो हमको बचाते हैं। वॉयलेंस है सर्जरी, ऑपरेशन, एलोपैथी कब चाहिए? जब मर्ज बढ़ जाए हद से, है ना, सर्जरी चाहिए। तो वॉयलेंस तो तब है, सर्जरी चाहिए। जिसे कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर पीस एंड देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर वॉर, धर्मो रक्षति रक्षता। तो वॉर भी करना पड़ता है, सत्युग में भी था, रामचंद्र जी को लंका में अटैक करना पड़ा, महाभारत में लगभग न्यूक्लियर वॉर हो गया, ठीक है। तो वॉर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, पर समझे बाहुबल से पूरी दृष्टि में, पूरी धरती में, वसुधा में शांति रहेगी, वो भी मुमकिन नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कह देना कि मतलब बाहुबल से होगा, नहीं होगा। हां एक चीज हो सकती है, एक चीज कही जाती है न्यूक्लियर डिटरेंस। अगर हम दोनों पड़ोसी हैं और हम सपोज दुश्मन हैं, नहीं वैसे दुश्मन हैं, अगर मुझे पता लगा ये मजबूत हैं तो मैं इन पे अटैक नहीं करूंगा, और ये भी जान रहा है मैं मजबूत हूं तो अटैक नहीं करेंगे, और जरा भी इनको लगा दब जाएगा अटैक कर देते। कुश्ती में भी ऐसा होता है ना। तो ये क्या कहते हैं, इक्वल पावर बैलेंस। तो ये पावर बैलेंस की थ्योरी के चलते 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 इतने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स बना दिए रूस ने और अमेरिका ने, और आज चीन ने, चीन खड़ा हो रहा है कि वो 10% जो स्टॉक पाइल न्यूक्लियर का है तो पूरी पृथ्वी वसुधा जो है फूट जाएगी। गलती में हो जाता है, लड़ाई में रहा हूं मैं, हो जाता है। मैं और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, अभी आपने कहा तो क्या तरीका है, क्या राजयोग क्या कहता है इसके बारे में। आप सब लोग गए हैं मेरा ख्याल है कल पांडव भवन में, तो पांडव भवन में अगर आप लेफ्ट में जाएं तो जैसे एंटर करते हैं आपने देखा है नीला बोर्ड है, और नीले बोर्ड पे 10 पॉइंट लिखे हैं, और 10 पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है उसमें, उसमें लिखा है, शीर्षक है अनोखा विश्वविद्यालय, जहां बैठे हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय। पॉइंट नंबर 7 है, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक अहिंसक रूहानी सेना है जो आध्यात्मिक नियमों के अनुशासन से जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा तरीका है, ये हमारा दर्शन है, इसको आगे लेके हमने चलना है और ये लिखा हुआ है। धन्यवाद।
बहुत खूब। तो वास्तव में युद्ध की तो आवश्यकता है, पर ये कौन सा युद्ध है? नॉन वायलेंट, एक अहिंसक युद्ध है जो एक संसार को परिवार बना सकता है। हिंसा के युद्ध परिवारों को तोड़ सकते हैं, हिंसा परिवारों को तोड़ सकती है। और जब एक ऐसी दुनिया में आज हम जहां बैठे हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे साथियों के साथ, तो बोले कुटुंब कम का क्या मतलब है? तो जवाब आया, सर कुटुंब कम रह गए हैं आजकल। जब कुटुंब ही कम हो गए हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करना क्या ठीक रहेगा? कहीं हम ऐसे तो नहीं 100-200 साल पुरानी या हजार साल पहले की बात आज लोग ऐसा तो नहीं समझेंगे? पर थैंक्स, भारत सरकार को भी थैंक्स, जो वसुधैव कुटुंबकम के इतने अच्छे विजन को लेकर के 2020 ये G20 का समिट किया और पूरी दुनिया को एक बार अलग तो जगी कि दुनिया एक परिवार हो तो सकती है। पर अब भी दिल में अंदर डर लगता है, दर्द भी होता है कि दुनिया के 4-6 देश तो डायरेक्टली युद्ध में आज हैं, 4-5 देश तो आज डायरेक्ट युद्ध में हैं, और इनडायरेक्ट वार की संख्या करें तो शायद आधा विश्व आज युद्ध लड़ रहा है आपस में। जब आधे से ज्यादा संसार दुनिया में लड़ रहा है, ऐसे वक्त में वसुधैव कुटुंबकम की बात कितनी बेमानी है, कितनी ईमानदारी से हम कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश हम चाहेंगे हमारे जयदेव निकम सर, डॉक्टर जयदेव निकम सर अपना बात रखें। क्या ये सही समय है वसुधैव कुटुंबकम की बात करने का जब संसार लड़ रहा है?
बिल्कुल सही समय है। मैं विश्वविद्यालय में काम करता हूं और एक जियोलॉजिस्ट भी हूं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तब ये वसुधैव जो वसुधा धरती के बारे में मैं जब स्टूडेंट्स को मेरे पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूं, यानी आप लोगों को तो हम लोग स्कूल से पढ़े हैं कि वसुधा की निर्मिति सूर्य से हुई है, सन से हुई है, लेकिन उसमें की एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य से, आपको पता है बिग बैंग थ्योरी, हम बिग बैंग थ्योरी से पता है कि 5 बिलियन ईयर्स बिफोर सन से कुछ गोले निकले और वो उसके ही ग्रेविटेशनल पुल में घूमने लगे। तो ये अपनी वसुधा, अपनी धरती, अपनी पृथ्वी एक ऐसे डिस्टेंस पे सूर्य से आके निकली और ऐसे डिस्टेंस पे उसका वो घूम रही है जैसे मानो कोई परमात्मा ने उसका एक यूनिक डिस्टेंस उसका बना दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सर्दियों में हमें जब ठंड लगती है तो हम लोग वुड फायर करते हैं और अपने हाथ, अपने को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले उसके लिए अपने हाथ उसके ऊपर रखते हैं। तो एक अपना शरीर एक यूनिक डिस्टेंस मेंटेन करता है कि जहां पे यदि हाथ पीछे ले लिए तो अपने को ठंड लगेगी, अपने हाथ आगे ले लिए तो जलन होगी। लेकिन नेचर ने ये ऐसा एक यूनिक डिस्टेंस बनाया कि उसको ओजोन लेयर और बाकी के इन चीजों ने सूर्य का अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रहे हैं उसका टेम्परेचर पृथ्वी का 50-52 डिग्री से आगे नहीं जा रहा है। उसके वजह से ये पृथ्वी में पानी जो है वो जल फॉर्म में है। यदि ये वसुधा सूर्य की नजदीक रहती थी तो क्या होता था, पानी क्या होता था, बाप बन जाता था। यदि ये थोड़ा उससे दूर रहती थी तो बर्फ रहती थी या सॉलिड स्टेट में रहता था। ये नेचर का चमत्कार देखो, ये एक यूनिक डिस्टेंस उसके अराउंड बनाया हुआ एक कवर और उसमें अपने सूर्य माला में घूमती हुई ये वसुधा, उसकी वजह से द्रव रूप होने के वजह से सब पृथ्वी पे जितने सजीव है उनके हरेक के शरीर में द्रव है, उसके लिए सजीव है। यानी सजीव माने तो आप पौधे लो, पंछी लो, बाकी की सब चीजें जो ह्यूमन बीइंग्स है और सभी एनिमल्स है, जितने सजीव है वो ये वसुधा में जो रहते हैं। और ये जो बारिश गिरती है, हम जो बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये सिर्फ हमारे मानवों के लिए नहीं गिरती, इन सबका उसमें उनका वाटा है, उनका हक है उसमें। लेकिन हम मनुष्य प्राणी ने क्या किया, एक स्वार्थी होके हमारी प्रजाति हम बढ़ाते रहे और बाकी के जो उसको लगते थे हिंस प्राणी उनकी प्रजाति वो कब करते रहे। उससे क्या हो गया, एक जगह पे मनुष्य प्राणियों की संख्या बढ़ गई, आज हम लोग 800 बिलियंस के ऊपर हमारी अभी पॉपुलेशन है जग में, 198 कंट्रीज है, 800 बिलियंस अपनी पॉपुलेशन है और हर जगह पे हम एक दूसरे के जैसे, ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा कि हम एक घोड़ में मचे हुए, आज एक दूसरे के गर्दन पकड़ने में हम लोग तुले हुए, वॉर की सिचुएशन में आ गए। तो इस सिचुएशन में हम अध्यापकों का या यूनिवर्सिटी में जो हम लोग काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, तो हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनता है कि ये जो समाज आगे जो बनने जा रहा है उस समाज को एक प्रॉपर दिशा दे और ये वसुधा कुटुंबक की जो स्थिति है कि एक एज ए वन फैमिली, एक फैमिली के मेंबर्स जैसे रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ में जैसे बिहेव करते हैं वैसा हम लोग, क्योंकि वर्ल्ड में एक कंट्री बहुत बड़ी अनाज पका रही है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और ऐसे कुछ गरीब देश है जहां पे आज स्टार्वेशन है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एक रोल प्ले कर रही है कि भाई कि जिस कंट्रियों में एक अनाज एक तरफ वेस्ट जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, तो वसुधैव कुटुंबम का महत्व है, मतलब है हम सब भाई बहने जो है या प्राणियों है उनका हरेक का जितना हक है उनको उन तक पहुंचाया जाए, ये सिर्फ अध्यात्म लेके जा सकता है। क्योंकि हम लोग बच्चों को जब अध्यात्म की शिक्षा देंगे उनको ये बताएंगे कि भाई तू यहां पे जो एजुकेशन ले रहा है वो सिर्फ कोई एक करोड़ का पैकेज लेने के लिए नहीं ले रहा है, इस पृथ्वी में तू आया है, जन्म लिया है, एक दिन तो तुम्हारा ये शरीर जाने वाला है, मैं 2-3 दिन से आत्मा और इसका एक को रिलेशन कर रहा हूं, ये आत्मा तो रहने वाला है बाकी शरीर तुम्हारा जाने वाला है, लेकिन जब तक आप हो तब तक एक वसुधैव कुटुंबकम का आप स्वीकार करो और एक दूसरे में भाईचारा बनाओ। और जैसे हमारे हजारों सालों पहले सनातन संस्कृति ने हमारा एक लक्ष्य दिया था, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम अपने उपनिषदों से आया है, पंचतंत्र से आया है, पंचकर्म से आया, और इनका रिश्ता जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो कॉन्फ्रेंस में पहली बार 11 सितंबर 1893 को उन्होंने जब कहा था अमेरिका के शिकागो में कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन्स, तो सब 5 मिनट लोग सिर्फ तालियां बजाते रहे, क्योंकि उन्होंने ब्रदर्स और सिस्टर्स ये जो वर्ड है ये पहली बार किसी वक्ता के मुंह से सुना था। तो हम लोग आज तो अध्यापक सभी है, तो हम लोग ये अध्यात्म की शिक्षा और इसके यहां से लेके जाए। आपने सही कहा है कि आज सही में वसुधैव कुटुंबकम करने के लिए जो आगे की जो पीढ़ी आ रही है उनको हम लोग पढ़ाने की और प्रॉपर शिक्षा देने की जरूरत है।
बहुत खूब डॉक्टर जयदीप जी का, जिन्होंने अपने सुंदर शब्दों में बात रखी कि अध्यात्म की एक महती आवश्यकता है यदि विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज एक शिक्षा जगत की ऐसी हस्ती हैं जिनके ऊपर देश की शिक्षा का दारोमदार भी है और साथ में एक अध्यात्म जगत की ऊंची हस्ती भी हैं जो आध्यात्मिकता की राहों पे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आप दोनों से ही हमारा एक एक प्रश्न रहेगा कि क्या वर्तमान शिक्षा नीति या जो नई शिक्षा नीति हम लाए हैं, नई न्यू एजुकेशन 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे इस देश को वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है, NEP है ना। फिर आगे हम साथ में उसके बाद में हम गीता दीदी से भी ये जानना चाहेंगे कि अध्यात्म क्या प्रयास वर्तमान में कर रहा है, विशेषकर ब्रह्मा कुमारी के संदर्भ में बात करें तो कैसे ब्रह्मा कुमारी वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षाओं को देश और दुनिया तक ले जा पा रहा है। तो पहले हम नई एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में ये बात करते हैं कि कैसे नई एजुकेशन पॉलिसी इस वसुधैव कुटुंबकम की सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है हमें। अभी चल सर,
देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को जब लॉन्च हुई, और मेरा हमेशा एक मानना रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये बताने के पहले कि क्या कहती है, यहां जितने भी माननीय लोग बैठे हैं और जिस एज ब्रैकेट में बैठे हैं, हम में से शायद ही कोई होगा जिसको इस चीज की कल्पना ना हो कि ये सही है, ये गलत है, ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, क्या संसार में हो रहा है, क्या देश में हो रहा है, क्या वैल्यू एजुकेशन है आज की डेट में, यंग जनरेशन किस तरह से बिहेव कर रही है। सारी चीजें को अगर आप एक कंपोजिट बॉक्स में डालेंगे तो हम सबकी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम एजुकेशन सेगमेंट से कनेक्टेड हैं, जो फ्यूचर जनरेशन को ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो ना सिर्फ देश को आगे ले जाएगा बट संसार को भी आगे ले जाएगा। हम सबको ये देखने की जरूरत है क्या हम उस चीज में खरे उतर रहे हैं, हम क्या उस चीज को कभी भी कोई चीज, चाहे वो पॉलिसी के तहत आए, चाहे वो इस तरह के पैनल डिस्कशंस के तहत आए, चाहे वो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस के तहत आए, ये ग्राउंड पे तभी उतरेगी जब उसका फील होगा। ये पढ़ने लिखने बोलने से तो सिर्फ अवेयरनेस होगी, लेकिन फील कैसे होगा आपके कंडक्ट में, आपके कल्चर में। हम यहां सारे क्यों इतने एनर्जेटिक या इस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में जहां भी हम जा रहे हैं वो फ्लो कर रहा है, वो एनर्जी, उसको आप चाहे डिफरेंट नोमेनक्लेचर दे दें, डिफरेंट टाइटल्स दे दें, बट द आइडिया इज फ्रेश, आइडियाज आर फ्रेश, एनवायरमेंट इज वेरी पॉजिटिव कंड्यूसिव, पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। आप खाना भी खाने जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये सेवा जो कर रहे हैं ये कितनी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये फील कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हम जब एजुकेशन सेगमेंट में हैं, क्या हम इस तरह की चीजें पहले अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं, इन चीजों को समझ के हम किसी परिपेक्ष में उस क्लासरूम में ले जाने की कोशिश करते हैं जिस क्लासरूम में जो आने वाली जनरेशन है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, वो ये कह पाए कि भाई ये चीज इस तरीके से होगी और मैं इसको फील कर रहा हूं। लोग वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, आप जितने मर्जी लेक्चर पढ़ा लीजिए, मेरा चैलेंज है जब तक उस कैंपस में बच्चा इन चीजों को फील नहीं करेगा या इन चीजों को देखेगा नहीं, वो पढ़ेगा, क्रेडिट लेगा, मार्क्स लेगा, स्कोर लेगा, पर जिंदगी वैसे चलेगी। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अनलेस एंड अंटिल वी एज एजुकेटर्स स्टार्ट लिविंग बाय एन एग्जांपल एंड सेट द स्टैंडर्ड्स इन द कैंपस, थिंग्स विल कंटिन्यू टू हैपन एज दे आर हैपनिंग, बट बहुत इंक्रीमेंटल चेंज होगा। जो माननीय दीदी, माननीय कमांडर जी ने कहा कि चेंज हमें एक्सपोनेंशियल चाहिए, इंक्रीमेंटल चेंज का समय नहीं है। चीज और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बदल रही हैं और जिस स्पीड से चीजों का यूजर कंड्यूसिवनेस और ह्यूमन फ्रेंडली सिस्टम बन रहा है, वहां पे हमें चेंज लाना है, नॉट इंक्रीमेंटल, एक्सपोनेंशियल चेंज लाना है। वो एक्सपोनेंशियल तब होगा जब हम चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगे। हमने जो 3 दिन में सीखा, हम ये 30 लोगों को सिखाएंगे, 300 को सिखाएंगे, 3,000 को सिखाएंगे। क्या हम में से ये कह सकते हैं कि हम अपने कैंपस में जो हमने वैल्यू लर्न की है या हम वैल्यूज लर्न कर रहे हैं या कर रहे थे, हम उन चीजों को इनकलकेट करवा पाएंगे? जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं और यहां इतने विद्वान लोग बैठे हैं, कोई मुझे बताए कि क्या एनईपी में इस तरह की बात की गई है? वी डोंट नीड पैनल डिस्कशंस। एनईपी में बहुत क्लियर कहा गया है कि इस देश का जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस होगा, जो लर्नर होगा, वो ग्लोबल सिटीजन कैसे बनेगा, जिसको हम एक वर्ल्ड कम्युनिटी की बात करते हैं और वर्ल्ड एज वन फैमिली की बात करते हैं, उसमें ग्लोबल सिटीजन डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन इंग्लिश में तो पढ़ने में बड़ी अच्छी लगेगी, पर उसे हमें फील करना होगा। क्या कहा गया है, क्योंकि मुझे पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत क्लियर कहा है कि जो बच्चा हमारे सिस्टम से निकलेगा वो एक तरफ ही शुड हैव ए डीप रूटेड प्राइड बींग इंडियन, नॉट इन थॉट्स बट ऑल्सो इन एक्शंस, also in intellect and also in the spirit on one side, on the other side he should have commitment and support to human rights, to global challenges, to sustainable development goals, global human being well-being, and then he should look at the serving community as the prime goal in order to be classified in the category of global citizen. I think since national education policy has put lot of emphasis on making our learners and graduates as global citizen, iska ek top level aim hai national education policy ka, jisme aap sab uske catalyst jaise act karna expected hai. India will become by 2040 ए नॉलेज सुपर पावर एंड प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स टू ऑल लर्नर्स इन द वर्ल्ड, ऑल लर्नर्स इन द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। आप इस एक स्टेटमेंट और इसके साथ ग्लोबल कनेक्ट को जब देखेंगे तो सारे ही रिफॉर्म्स जो देश में हो रहे हैं ये इसी लाइन को एड्रेस करने के लिए हो रहे हैं और ये तभी फाइनली इंप्लीमेंटेड होंगे एज डिजायर्ड जब हम में से एक आदमी अपने आप को इंप्लीमेंट करके दिखाएगा एट द प्रीमाइसेस एंड द एनवायरमेंट वेयर वी आर हैविंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा एम्फेसिस है कि हम वर्ल्ड एजुकेशन के सेगमेंट में लीडर बने। उस कंपोनेंट में स्पिरिचुअल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन सारों को इंटीग्रेट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू है और जिस स्पीड से शुरू है आप सब लोगों की मदद से ये दिन भी हम देखेंगे जब हम एजुकेशन सेगमेंट को एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाएंगे और नॉलेज सेगमेंट को लीड करेंगे। थैंक यू।
बहुत 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 अच्छा लगा सुनकर के कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2040 तक भारत को शिक्षा जगत की, विश्व में शिक्षा जगत की एक बेहतरीन सुपर पावर भारत बनेगा। बहुत सुंदर सपना है और इसके लिए बहुत अच्छे से काम भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने शुरू किया है। सो वंडरफुल। तो अब हम गीता दीदी से ये जानना चाहेंगे, दीदी कैसे अध्यात्म इस सपने को साकार करने में कैसे मदद कर सकता है? क्या ब्रह्मा कुमारीज के प्रोजेक्ट्स, गोल्स, रास्ते ऐसे कौन से हैं जो इस सपने को कि 2040 या उससे पहले भारत विश्व जगत की एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा जगत में सुपर पावर बने, इस बारे में दीदी आप हमारा मार्गदर्शन करें कैसे वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार कर रही है ब्रह्मा कुमारीज।
ब्रह्मा कुमारीज पिछले 87 वर्षों से ये कार्य कर रहा है। जहां ये कार्य एक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ, आज सातों ही खंडों में 140 देशों में अपने 12,000 से भी अधिक सेवा केंद्रों, उप सेवा केंद्रों और बीके पाठशालाओं के माध्यम से ये शहर, कस्बे, गांव में कार्य कर रहा है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट ला रहा है। परंतु इसकी पॉलिसी यही है कि हमें स्वयं से ये कार्य शुरू करना है। पहले हम अपने आप को बदलेंगे तब हम जग को बदल सकेंगे। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा और स्व परिवर्तन में हमें कोई नौकरी धंधा नहीं छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है, परिवार समाज नहीं छोड़ना है, लेकिन जो हमारे अंदर अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण जो विस्मृतियां हैं, बुराइयां जो हमारे में आ गई हैं, जो विकृतियां आ गई हैं, हमें इसको छोड़ना है। तो जब हम स्वयं को बदलेंगे तो हमें दूसरों के लिए भी आशा जगेगी कि हम बदल सकते हैं तो और भी बदल सकते हैं। और इस प्रकार से आप दूसरों के पीछे भी कारोबार करेंगे, सेवा करेंगे। मूल ज्ञान जो परमात्मा हमें देते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान हम उनको भी सुनाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे विद्यालय में कोई भी पुरानी शास्त्रों की कथा कहानियां नहीं है, कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई व्रत उपवास की बात नहीं है, लेकिन हम सबके जीवन में इन नियमों की धारणा है जो हरेक ने अपनी समझ से, अपनी अवेयरनेस के कारण और इस एम ऑब्जेक्ट को लेकर के की है, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा है। एक तो हमारा पवित्र चरित्र, हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना है और सबके साथ शुद्ध दृष्टि वृत्ति से व्यवहार करना है। दूसरा, अन्न शुद्धि, हमें कोई तामसिक खुराक नहीं लेना है, मांसाहार नहीं करना है, लेकिन शुद्ध सात्विक स्वच्छ और शाकाहारी भोजन करना है। जिन विचारों में रहकर, जिन कर्मों को करते हुए हम खुद कार्य करेंगे तो हमारे सभी कार्य श्रेष्ठ होंगे, सुखदायी होंगे। तीसरा है ज्ञान को गुणों में बदलना। आत्मा की अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, पर जब हम आत्मभाव से सबको देखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, सद्भावना आएगी, एकता आएगी, हमारे अंदर शुभ चिंतन होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं हमें कि शुभ भावना और शुभ कामना सबके लिए रखो। शुभ भावना और शुभ कामना से जिएंगे, चलेंगे, व्यवहार करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ये कुछ व्यक्तिगत धारणाओं के अनुभव हैं जो हमने इन आँखों से यहाँ आने वाले भाई बहनों में देखे हैं, और जो भी यहाँ नए विजिटर्स आते हैं, नए जिज्ञासु आते हैं, हम उनको भी बहुत प्यार से चलाते हैं। 6 मास हमारे ये प्रोग्राम चलते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स है, नए विजिटर्स हैं या जिज्ञासु है, और 6 मास हमारे जो रेगुलर भाई बहने हैं उनको हम रिफ्रेशर कोर्स या इंटेंस मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, ताकि वे अपने पुरुषार्थ में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। और जो भाई बहने हमारे यहाँ समर्पित होकर हेडक्वार्टर के कैंपस को संभाल रहे हैं और कैंपस की गतिविधियों में अपनी अपनी ड्यूटीज के द्वारा सहयोग दे रहे हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर से रिफ्रेश लर्निंग कराते हैं, ताकि वे भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो इस प्रकार से अगर हरेक ऑर्गेनाइजेशन, हरेक परिवार या हरेक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हरेक कंपनी इस प्रकार से अगर अपनी भौतिक कार्य क्षमता और कार्य विधि के साथ साथ अगर इन वैल्यूज और धारणाओं को लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले भाई बहनों को सिखाएंगे, शुभ भावना रखेंगे, उसके अंदर उमंग उत्साह भरेंगे, तो जरूर ये रिजल्ट हम पूरे भारत में और पूरे विश्व में ला सकते हैं। ओम शांति।
आपने बहुत सुंदर शब्दों में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा किए जा रहे प्रयास कि विश्व एक परिवार बने, परिवार की भावना उनमें पैदा हो, जो 87 वर्षों से किए जा रहे प्रयास, उस पर प्रकाश डाला। ऑडियंस भी चाहे तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने पर्ची पे क्वेश्चन लिख करके आप यहां दे सकते हैं, आपका प्रश्न भी हम शामिल करेंगे। आपके पास 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, अपना प्रश्न लिख करके हमें दे सकते हैं। पर हमारा अगला प्रश्न कमांडर साहब से है कि दुनिया में आर्थिक असमानता बहुत है और जनरली ये माना जाता है, पता नहीं ये रॉन्ग नोशन है या राइट नोशन है, आप इस पे बात करें, कि जब तक दुनिया में आर्थिक असमानताएं रहेगी तब तक वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं हो सकती या वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो सकता। पता नहीं ये बात सही है या नहीं है, पर आप इस बात पे प्रकाश डालें कि क्या वसुधैव कुटुंबकम के होने की एक प्रायर शर्त है क्या, आर्थिक असमानता या आर्थिक समानता।
धन्यवाद प्रोफेसर मुकेश। ये तो प्री कंडीशन नहीं है, ये तो हमने अचीव करना है। सतयुग में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद्र राजा रंग सब थे, तो जब तक ह्यूमैनिटी है सब बराबर नहीं हो सकते। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और राजयोगिनी बीके गीता दीदी से दादी से भी कहना चाह रहा हूं, सादर ये सुझाव है, यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां पे हमारा तो हम तो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, आप बेहतर जानते हैं, उन्होंने 2000 से 2000 क्या होता है मिलेनियम एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स गूगल में आप सब देख सकते हैं, और 2015 से उसको मॉडिफाई किया, 15 साल चला अचीव नहीं हुआ, 2015 से मॉडिफाई करके अब लिखा है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द वर्ल्ड 2035, और बल्कि वो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल कॉम्प्रिहेंसिव मेजरेबल वर्ल्ड प्रोग्रेस गोल्स, अगर मैं हिंदी में उसे कहूं तो सतत व्यापक विश्व प्रगति के गोल, और इस गोल्स के 17 गोल्स हैं, और 17 गोल में इस गोल नंबर 16 जो है पीस, और मेन एम क्या है, फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की बात कही आपने, प्रॉस्पेरिटी के बगैर भूखे भजन नहीं, भूखे पेट नहीं भजन को पाला, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑन द प्लेनेट एंड थ्रू पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप भी ऐड किया है नंबर 17, और 17 गोल के अंदर ये भी ऐड किया है 2015 में जो शुरू किया है उसमें ये 20 साल चलेगा 35 तक है, ये भी है 17 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में गवर्नमेंट एकेडमिया बिजनेस एनजीओस, तो मेरी आप सादर सुझाव है कि हमारा एसडीजी के साथ हमारा लिंक हो, ये चीज हमारा ब्रह्मकुमारी संस्था जो है उसमें जुड़ जाए, और इस गोल्स के बारे में क्या बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और मेजरमेंट भी दिए हैं इसमें, तो इसमें क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां जो 8 लिखे हुए पिलर, लव हार्मनी पीस हैप्पीनेस, तो मैं तो बड़ा लव और रिस्पेक्ट ये हम करें, ये ड्यूटी हमारी। महात्मा गांधी ने कहा हेट द सिन नॉट द सिनर, तो अगर हम चाहे वो सिनर भी है लव एंड रिस्पेक्ट अगर हम करेंगे, जो पहले दीदी ने भी यही कहा कि हम गुस्सा खा जाते हैं, हम पहले ही कह दें, दादी जानकी में मिला था आदरणीय स्वर्गीय कि भाई कि ये मेरी गलती है आप ठीक हो, तो लव एंड रिस्पेक्ट तो सब सुलझ जाएगा। अब आपने आर्थिक विषमता की बात की, आप तो गेस कर सकते हैं जो समन्वय जो कॉम्प्रिहेंसिव गोल्स हैं, पहला उसमें है पॉवर्टी, दूसरा उसमें है हेल्थ, तीसरा उसमें है एनवायरमेंट, चौथा उसमें है एयर क्वालिटी, पांचवा उसमें है वाटर क्वालिटी, और ऐसे 17 गोल्स हैं, ये सब गूगल में, और 2000 से चल रहा है ये, अभी का नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर हम जुड़ते हैं, ये पार्टनरशिप क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अगर उस तरह पहुंचना है हमने, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात मुकेश जी ने कही, अमेरिका ने अटैक कर दिया इराक पे, क्यों, उनका माल हथियाने के लिए ऑयल हथियाने के लिए एक्सक्यूज बना दिया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अटैक कर दिया। तो ये जो ग्रीड की भावना है, सनातन धर्म का क्या क्या धृति क्षमा दमोस तेयम शौच मिद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो धर्मम दशम लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण है, उसमें एक ये है कि मैं हराम का नहीं लूं, हराम माने जो मैंने खुद कमाया नहीं है वो मेरा नहीं है, अस्ते है। तो ये हमारे पूरी संस्था पूरी सनातन की हमारी ये धरोहर है, पर हम फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं तो ये समझता हूं फॉलो करने के लिए कितना भी ज्ञान रखें, लव और रिस्पेक्ट लेके आगे हम चलते हैं तो सब चीज सुलझ जाएगी। और ये मेजरमेंट हो रहा है, इसका हर साल मेजरमेंट होता है, कम से कम 300 पैरामीटर्स हैं, लैग पैरामीटर्स एंड लीड पैरामीटर्स, मेरा टीसीएस में काम क्वालिटी का था, लीड लैग क्या होता है कि आपने करना क्या है और फिर आउटकम क्या मिला, ये दोनों मेजरमेंट हो रहा है इसका। उसमें पहला काम यही है इनइक्वलिटी खत्म करना है, जेंडर इक्वलिटी, आपका तो ब्रह्म कुमारी है ही, जेंडर इक्वलिटी का पूरा एम्पावरमेंट का काम है, तो ये आप पढ़ें और इसमें जुड़े, और ये आपके शहर में भी संस्था है इस चीज की, हर जगह है। और दूसरी में छोटी सुझाव, सादा सुझाव ये होगा, हम मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आप एक काम करें, आपने तो आरईआरएफ में कई डिविजन्स हैं, एक एसजीयू डिवीजन बन सकता है नंबर वन, और नंबर टू रिलैक्सेशन हो जाता है तो आदमी का दिमाग खुल जाता है। सब मेरा ख्याल इसके अंदर है, आप ह्यूमर विंग भी चलाएं आरईआरएफ के अंदर, टीचर्स विंग, सिक्योरिटी विंग, एजुकेशन, ह्यूमर, दैट इज आदमी को तैयार करने का तरीका ह्यूमर से स्टार्ट हो। ह्यूमर से जाग जाते हैं, है नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज से भी जाग जाते हैं, ह्यूमर से भी जाग जाते हैं। आशा है मैंने आपका सवाल थोड़ा बताया, धन्यवाद।
बहुत बहुत अच्छे से आपने इसको आंसर किया है। हमारा एक अविचल सर से एक प्रश्न है, यहां पर बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, बड़े एजुकेशन संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर्स हैं उनका एक फैमिली लाइफ भी है सबका, और एक प्रोफेशनल लाइफ बच्चों के साथ भी संबंध है, तो दो जिंदगियां जो साथ में उजी रहे हैं और कई लोगों को बनाने के निमित्त भी हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि एक टीचर में कौन कौन सी आप ऐसी क्वालिटीज आने वाले समय में, दो साल, तीन साल, पांच साल में क्या देखना चाहते हैं, क्या आप उन टीचर्स के लिए क्या मैसेज है, और एक पेरेंट के लिए क्या मैसेज है, दोनों अलग बात है। एक टीचर जब टीचर का रोल प्ले कर रहा है, एक टीचर जब घर में पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो घर में जब वो अपने बच्चे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार कैसे करे, उसको कैसे फील आए बच्चे को कि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, उस स्टूडेंट में वो कैसे डाले कि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग यहां पर बड़े बड़े कॉलेज चला रहे हैं, तो उन लोगों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? दो बातें हैं, प्रश्न के दो हिस्से हैं, आपकी एक टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक पेरेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, और एक जो कॉलेजेस चलाने वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और इस दिशा में यूजीसी का क्या रोल है?
धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, जब एक तरफ हम वर्ल्ड एज वन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो यहीं से एक ऑफशूट निकलता है कि मेरा बच्चा और कॉलेज या स्कूल में आने वाले बच्चे, ये दोनों ही एक तरफ जब हम कह रहे हैं हर चीज एक है, तो जो चीज हमने सीखी, मैं इस प्रश्न में आऊंगा, और मुझे लगा कि ये जो दो तीन दिन हमने प्रोग्राम अटेंड किया, अगर मैं इसको कल रात को सोच रहा था कि इसको अगर मैं सार में कन्वर्ट करूं, मैंने क्या सीखा, मतलब सीखा तो बहुत कुछ, बहुत से सेशंस में सीखा, पर सीखने के साथ मूल क्या सीखा, जिसको मैं समराइज करूं और कहूंगा ये सीखा मैंने एट दैट, तो मैं पर्सनल, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप इस पर डिफर कर सकते हैं, मुझे ये लगा कि मैंने एक ही चीज सीखी, चेंज इन माइंडसेट। जो हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, जो हो रहा है वो और भी बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो और भी बढ़िया होगा। ये मुझे लगा, ये मैंने सीख, यहां से सीख के जा रहा हूं। तो जो आपने बात की कि क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी एक अपनी फैमिली है, वो परिवार में आपको वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि जो परिवार के आपके मेंबर्स हैं वो आपके साथ मैक्सिमम समय गुजारते हैं, वो आपको देखते हैं कि आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका वेरियस इश्यूज पे, वेरियस सिचुएशंस पे आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो आपका रिस्पॉन्स होता है लार्जली आपका इंप्रेशन भी वही कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने सीखा है, हमें उस चीज को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जो चीज हम अपने फैमिली में, चाहे अपने बच्चे हों या अपना परिवार हो, उससे बढ़कर हमें स्कूल या कॉलेज में कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वहां आप एन नंबर ऑफ लर्नर्स की करियर को शेप कर रहे हो, फ्यूचर को शेप कर रहे हो। हर जो बच्चा आपकी क्लास में आता है वो आपको ये देखता है कि आपसे सीखने की कोशिश करता है। मैं बार बार एक पॉइंट पे शुरू से एम्फेसाइज कर रहा हूं, सीख फील से ज्यादा होती है, सीख फील से, देखने से, समझने से ज्यादा होती है, और बाकी चीजें जो है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होती है, इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो बदलाव आप उस बच्चे में चाहते हो और जिस तरह का बच्चा आप उसको बनाना चाहते हो, वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी आपको हो। तो जिस पे मैं चाहूंगा कि हम में से हर एक आदमी लीड बाय एन एग्जांपल करे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हम एक कल्चर के यूज टू हो गए हैं जिसको मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं, ए फॉर्मेलिटी ड्रिवन कल्चर। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, हमें कॉन्फ्रेंस में जाना है, हमें ये प्रोग्राम करना है, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से सबका एक डिसीजन एंड रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम वो काम करेंगे जिसमें पर्पस अटैच्ड है, और वो पर्पस वो होगा जो हम चाहते हैं और जो हमें पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में और आगे ले जाने का सोच रहा है। जब हम इसमें देखते हैं तो तीसरी चीज मुझे लगती है 3 P's पे हमको हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए। प्रोफेशनल वैल्यू, वैल्यू कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ वैल्यूज इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज, द नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी डिसिप्लिन में हम कनेक्टेड हैं प्रोफेशनल नॉलेज, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमें हमेशा अपने आप को डेवलप करना है। आज की डेट में अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखें, लॉट ऑफ एम्फेसिस हैज बीन पुट ऑन अनलर्निंग बिकॉज टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, फंडामेंटल विल रिमेन एज इट इज बट एप्लीकेशन पार्ट इज गेटिंग चेंज। सो आर वी यूज टू इट, आर वी एक्चुअली वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर सेल्स। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी कोई चीज इस प्रमाइसिस में बैठे आदमी को नहीं पता होगी जो सही या गलत के फ्रेम में नहीं होती है। आई डोंट नीड एन एक्सटर्नल पर्सन टू टेल मी व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। हमें अपने आप को, अगर हमारे गोल बहुत क्लियर है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। बहुत से UGC की बात की, सरकार की बात की भाई साहब ने, आप ये देखिए कि जो भी चीज हुई, क्या हम में से यहां जो बैठा है उस चीज को समझा? इतना बड़ा G20 का इवेंट हो गया, उसमें G20 में जो 17 SDGs की बात हो रही है उसमें एजुकेशन भी SDG 4 पे था, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन थी। मेंबर कंट्रीज 129 कंट्रीज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव केम इन एडिशन टू द मेंबर कंट्रीज। एजुकेशन का 6 पॉइंट का रेजोल्यूशन नोटिफाई हुआ। क्या यहां बैठे हुए में से कोई बता सकते हैं वो 6 रेजोल्यूशंस क्या थे? क्योंकि वो हमारा तो पैशन है। मुझे बार बार इस बात पे लगता है कि हम वाकई में रिफॉर्म कर पाएंगे अगर हम पैशनेट होंगे, अगर हम कमिटेड होंगे। तो हमारे लिए तो वो एक बाइबल जैसी चीज थी कि जो हम वर्ल्ड एज ए वन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड एज ए कम्युनिटी ने बैठ के कुछ डिसीजन लिया एजुकेशन सेगमेंट में। उस सेगमेंट को अगर हम देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, समझेंगे नहीं तो इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, इंप्लीमेंट करेंगे नहीं तो एप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन का डिसीजन कैसे होगा? और अगर एप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो जिस बच्चे के लिए ये पूरी चीज हुई वो बच्चा उसमें बेनिफिशियरी कैसे होगा? आप और हम तो आते जाते रहेंगे, पॉलिसीज आती जाती रहेंगी, लेकिन बच्चा ने जो लर्निंग कर ली उसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक बार आपके प्रमाइसेस से निकल गया तो वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बन गया, जहां पे वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा। 6 रेजोल्यूशंस थे, मैं जस्ट एक मिनट में बताऊंगा। टू पुट द एम्फेसिस ऑन द फाउंडेशनल लर्निंग, लर्निंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, लर्निंग फॉर हायर एजुकेशन, लर्निंग फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट। सेकेंड था, वी ऑल विल वर्क टूगेदर। वर्ल्ड को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? वी ऑल विल वर्क टूगेदर टू रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड। वी विल पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द एक्वायरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा था कि पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होता है टेक्नोलॉजी से, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होता है स्किल से। सो ईच कंट्री विल पुट एम्फेसिस ऑन एनहांसिंग द स्किल एजुकेशन एंड द टेक्निकल एजुकेशन टू द लर्नर। चौथा पॉइंट था जो मैंने बात की कि अपडेट करने की, ईच मेंबर कंट्री including those invited and attended as invitees will put emphasis on supporting 2 entities, supporting higher education institutions and supporting faculty members. For what? For initializing and implementing programs to keep them updated in the areas of technology advancement so that they really able to lead the reforms in the global community. Panchwa sabse important tha, ओपन, एक्सेसिबल, सिक्योर्ड, इक्विटेबल साइंटिफिक कोलैबोरेशंस एंड मोबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स। बिटवीन मेंबर कंट्रीज। आज मोबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स का एक इतना इंफेसिस है, जब हम ग्लोबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो नॉलेज शेयरिंग, कल्चर शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लर्निंग न्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, लुकिंग एट व्हाट अदर्स आर डूइंग वेल, ये पांचवा रेजोल्यूशन था। छठवां जो था, वी ऑल एज ए मेंबर कंट्रीज विल टेक नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विच विल मेक इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी मेंबर्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ये सारे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप इसकी ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट तरीके से देखिए। मैं हमेशा मुकेश जी इस बात को देखता हूं कि हमने क्या एजुकेशन सिस्टम बनाया, जहां हर चीज सिंगल है, मेरे मार्क्स, मेरा ग्रेड, मेरा रैंक, मेरी पोजीशन, मेरा प्लेसमेंट, हर चीज में आप ने सिंगल कर दी। पूरे चार साल तीन साल के कोर्स में अगर आप देखें तो हर चीज, आवर एम्फेसिस ऑफ द एजुकेशन सेगमेंट, क्योंकि हम ग्लोबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैंने अभी छह रेजोल्यूशंस भी पढ़े, लेकिन हम जो ग्राउंड देख रहे हैं उस ग्राउंड पे हर चीज इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, हर आदमी की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे। लेकिन उसके साथ हम दो लाइनें और भी बोलते हैं, टीमिंग अप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अंटिल वी बिल्ड ए टीम ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वी आर गोइंग टू बी लिमिटेड बाय आवर ओन लिमिटेशंस। तो हमें एक टीम बनानी है। इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि दिस इज एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एनी वन एनी टाइम एनी वेयर, अनलेस एंड अंटिल वी बिल्ड ए टीम ऑफ पीपल विद क्रॉस कल्चर्स, क्रॉस कम्युनिटी, क्रॉस nationalizations, we will not be able to create an individual who can be called as globally competent and locally relevant. तो आज हमें इस education system में जो reform करना है, जब हम वाकई में world as a single community or one man one community की बात करते हैं, और उस तरीके जो मैंने कहा कि national education policy के बात कर रहे हैं, हमें एक चीज और भी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ खराब था, पहले सब कुछ चल रहा था, उसमें कुछ डेविएशंस आए हैं, उसको करेक्ट करना है। वी शुड फील प्राउड, वी आर प्रोडक्ट ऑफ द सेम एजुकेशन सिस्टम, वी एंड आवर कलीग्स हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म एंड वी शुड फील लॉट ऑफ प्राउड इन दैट। हाउएवर देयर इज अ नीड टू मेक इट व्हाट इज रेलिवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। तो इस चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी लाने की जरूरत है। उन सारी चीजों में ये स्पिरिचुअल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, thoughts about making global community as a well-being community, thoughts for making others also, ये सारे जो attributes हैं एक human being बनाने के, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, ये education का part करना है। इसको part बनाने के लिए आप में से काफी लोग जानते होंगे, we have recently launched national credit framework। अब एक कल्पना ऐसी है कि credit framework में बच्चा जो है वो साल के, हमने स्कूल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, चारों को इंटीग्रेट करते हुए, आप वो टेबल भी देख सकते हैं, टेबल वेबसाइट पे भी है। उस टेबल में हमने कहा 40 घंटे 40 क्रेडिट हर साल के होंगे, 30 घंटे का एक क्रेडिट होगा, 1200 घंटे की पढ़ाई होगी हर साल की, वो एक सर्टिफिकेट होगा, पहले साल, दूसरे साल डिप्लोमा होगा, तीसरे साल डिग्री होगी, जिसको हम मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट कहते हैं। आप उन सारी चीजों के साथ ये भी कहा कि जो डिग्री देना चाहते हैं उसके 50% क्रेडिट दीजिए। तो अगर मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ करना है और आप एज ए यूनिवर्सिटी हैं, तो मुझे अगर तीन साल का कोर्स है तो 120 क्रेडिट हो गए, अगर 40 क्रेडिट एक साल के हैं तो 60 क्रेडिट तो आप मुझे इकोनॉमिक्स के पढ़ाएंगे, बचे 60 क्रेडिट वो भी देखिए 50% कंपोनेंट है, आप वहां स्पिरिचुअल एजुकेशन लाइए, आप वहां वैल्यू एजुकेशन लाइए, आज लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइए, एनवायरमेंट लाइए, सस्टेनेबिलिटी लाइए, ग्लोबल चैलेंजेस लाइए, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू थिंक थ्रू, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट न्यू लर्निंग मॉडल्स वेयर स्टूडेंट इज लुकिंग एट इन विच ही आर शी इज कंफर्टेबल एंड बिकम मोर कॉम्पिटेंट। So the bottom line is that all of our activities should be on the basis of making student learning environment as conducive as possible. Jitni cheeze hum yahan seekh rahe hain ya as a human being seekhte hain, aaj hame education model usko inculcate karne ka opportunity de raha hai. Aur hum agar usko use nahi karenge, aur autonomy remains with the universities, whether they are affiliating universities or different types of universities. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, उस इकोसिस्टम में समझने की, उसको देखने की
और देखने के साथ उसको इंप्लीमेंट करने की जो एक ड्राइव होगा वो लीडरशिप से ही होगा और रिफॉर्म्स हमेशा टॉप डाउन से ही होंगे। ऊपर से ही ये इंकलकेट होगी कि वी वांट दीज थिंग्स टू बी टॉट टू आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। ये सारी चीजें जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चा कोर नॉलेज, बच्चा स्पिरिचुअल नॉलेज, और बच्चा समझेगा कि आगे जाके ये चीज मेरे लिए कैसे होती है, ये चीज कितनी अच्छी होती है, ये सारी चीजें आपको वहां से समझ में आएंगी। तो मुझे ये लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि टीचिंग कम्युनिटी में फैकल्टी इज एट द कोर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर स्टेक होल्डर किसी इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, अगर स्टूडेंट्स तो आते जाते रहते हैं बट मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स रिमेन इन द इंस्टीट्यूट्स, सो दे आर द कोर। इसलिए यहां पे सारे लीडर्स आए हैं तो मुझे भी अच्छा लगा कि यू आर इन अ पोजिशन टू गो बैक। पर जो मैंने बात कही कि क्या हम क्लोज लूप मोड में काम करते हैं, क्लोज लूप मोड का मतलब यह है कि मैंने कोई इनपुट दिया, मैंने कोई प्रोसेस दिया और मैंने कोई आउटपुट दिया, चाहे वो आउटकम के फॉर्म में हो, क्या हम उस आउटकम को मेजर करते हैं टू रिफाइन माई इनपुट एंड माई प्रोसेस। ये चीज जब तक नहीं होगी सिस्टम में, कहां से कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, आप मुझे बताइए। ये सारी चीजें लाने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस जिम्मेदारी में सबसे पैरामाउंट रोल अगर किसी का है तो वो एकेडमिक लीडर्स एट ऑल लेवल्स। हर आदमी लीडर है, जैसे कल भी ये बात डिस्कशन में आई थी कि लीडरशिप में, जैसे कोई भी आप लीडरशिप की पोजीशन ले तो आज मुझे देखें मेरे ऊपर भी आई हैव टू रिपोर्ट समबडी, देर आर मैनी हु आर रिपोर्टिंग टू मी, सो देर इज ए लीडरशिप। लीडरशिप वेन वी आर लुकिंग एट, आपको एक कॉल लेना है कि मुझे ऊपर के साथ कनेक्ट होना है या मुझे बॉटम ऑफ द पिरामिड से कनेक्ट होना है। आप हमेशा ये याद रखिए कि हमेशा जो ब्रेथ रहेगी वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में ज्यादा होगी। तो जितने रिफॉर्म्स आप वहां इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जितने रिफॉर्म्स आप उस तरीके से अपने आप को लेके आगे बढ़ा पाएंगे एज ए लीडर, उतने ही रिफॉर्मेटरी चेंजेस जो हैं वो एजुकेशन सेगमेंट में होंगे एट ऑल लेवल्स। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लीड बाय एन एग्जाम्पल, और जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि बिकम ए चेंज लीडर, दैट यू विल लीड द चेंज। सिंस यू हैव अटेंडेड दिस प्रोग्राम, सी दैट यू मेक द नेसेसरी एक्शंस वंस यू गो बैक, एंड देन यू शुड बी एबल टू टेल दीज आर माई टेक अवेज फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस, एंड आफ्टर अ ईयर यू शुड बी एबल टू टेल दैट दीज आर द सक्सेस स्टोरीज आई क्रिएटेड फ्रॉम द लर्निंग्स आई मेड फ्रॉम दीज कॉन्फ्रेंसेस।
लीडिंग बाई एग्जाम्पल्स, ये आपने बहुत अच्छी जो बात कही, और मैं आपको बताऊं सर भी, खुद अविचल सर भी यहां पर पिछले 3 दिनों से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे खूबसूरत नोट्स बनाए हैं, एक एक चीज के नोट्स इनके पास हैं। मैंने देखा इनके, मुझे देखने का चांस मिला तो इनके मोबाइल में आप देखोगे तो हर सेशन के पॉइंट वाइज नोट्स, शायद यहां 10 में से कितने लोगों ने, 100 में से कितने लोगों ने बनाए होंगे मुझे नहीं पता, पर ये कमिटमेंट दिखाता है, और इसी तरह के कमिटमेंट जो है एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जा सकते हैं। आप ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप में पिछली अपनी बातों में बहुत सारे क्वेश्चंस के आप आंसर कर भी चुके हैं, ज्यादातर लोगों के मैं देख रहा हूं क्वेश्चंस इस तरह के हैं ऑडियंस से कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन, इस तरह के स्पिरिचुअल एजुकेशन के सब्जेक्ट क्यों नहीं शुरू किए जाते। तो आपने ऑलरेडी आंसर किया है कि अब एनईपी के अंदर 50% हमने आजादी दे दी है इस तरह के उसमें करने की।
ऐड करूंगा इसमें, देखिए मैं बार बार इस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, ये पहले भी हुआ करता था, ओपन इलेक्टिव्स, फ्री इलेक्टिव्स, इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव, तो ये ऐसा कभी इस एजुकेशन सेगमेंट में नहीं था कि ये ऑप्शन नहीं था। आई थिंक वी हैव नेवर टेकन सीरियसली, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं मार्क्स पे, इसलिए मैंने कहा कि हम हर चीज इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे रुक जाते हैं, उस मार्क्स में हमने कहीं कैटेगराइज ही नहीं किया कि कोर सब्जेक्ट में 50% होंगे, 10% स्पेशल एजुकेशन के क्रेडिट उसको अर्न करने ही करने हैं। आप मुझे बताइए, हम सब एज ए स्टूडेंट भी पढ़े हुए, कभी ये प्रोविजन था इसके ऊपर कि आप एथिक्स नहीं पढ़ा सकते। हमारी जो प्रॉब्लम है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इज मोर ऑफ फॉर्मेलिटी देन ऑफ पर्पस, हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। सरकार ने एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दीदी जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या कंपलसरी इलेक्टिव, ठीक है एनवायरमेंट पढ़ाया जाए, हमने कभी किसी समय ये कहा एथिक्स जरूर पढ़ाई जाए, ठीक है। अब क्या किया यूनिवर्सिटीज ने, एक एक क्रेडिट का, दो क्रेडिट का एक कोर्स कर दिया। 6 सेमेस्टर में अगर मुझे एनवायरमेंट में आपने एक पढ़ाया और मुझे नंबर लाने के लिए तो पढ़ना है, फिर वो सिस्टम हमारा ऐसा है, मगअप, सिट इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड देन राइट डाउन वॉट एवर यू हैव रिमेंबर, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर ये हमेशा रहे, तो ये मॉडल हमेशा एग्जिस्ट करता रहा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जितना आप उसको लीड करेंगे उतना ग्राउंड बदलेगा, नहीं तो ये इस तरह से बातें आप बोलते रहिए। अब मैं आप कहेंगे तो अपन बात कर पाएंगे इस पे। आज क्वेश्चन पेपर सेटिंग देखिए, वर्ल्ड में प्रैक्टिस है यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच दे डिफाइन द क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। उसके छह लेवल्स हैं, उस लेवल में जो पहला दूसरा तीसरा लेवल है जिसमें वो बात करते हैं मेमोरी की, आर यू एबल टू रिमेंबर, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर आर यू एबल टू पुट ऑन द आंसर शीट। इन तीनों पे कोई भी आउटकम बेस्ड स्किल सेट नहीं है वर्ल्ड वाइड, कहीं सेट नहीं है। जो सेट है वो ये है कि जो आपने याद किया, जो आपको समझ आया, आप उससे कुछ सॉल्व कर सकते हो, उससे आप कोई नई चीज बना सकते हो, जिस चीज को आप बनाओगे उस तरह की सिमिलर चीजें अगर ग्लोबल कम्युनिटी में अवेलेबल है तो आप एनालिसिस कर पाते हो क्या उसका। लेकिन हम आज क्वेश्चन पेपर पहले तीन लेवल्स पे ही ज्यादा डाल रहे हैं, फिर कहां से आउटकम आएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप उसको उस तरीके से समझेंगे कि आई नीड टू ब्रिंग चेंज, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा पैशन है, बिफोर आई लीव द जॉब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये याद कर पाऊं कि मैंने ये इंक्रीमेंटल या एक्सपोनेंशियल चेंज लाया था। तो जो आज कह रहे हैं कि ये कब इस तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे, आज आपके पास क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, तो एक मोमेंटम है। इसलिए मैं बार बार इस मोमेंटम को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो शायद ये मोमेंटम फिर कब आएगा हमारे लाइफ टाइम में, तो क्वेश्चन मार्क है।
हर काम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर काम नियम कायदों के जंजीरों में डालकर नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसे भी काम हैं जो हमें अपनी जिंदगी में जी कर शुरू करने होंगे, और जैसे हम उसको जी कर शुरू करेंगे वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो हम अब चूंकि अंत की तरफ बढ़ने लगे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे आप सभी से एक एक करके, तो हम कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आप इस पूरे सेशन का कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दें, आप सभी से हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे इस बात में।
देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, 100 साल पहले वसुधा पे 200 करोड़ आबादी थी, अब 800 करोड़ आबादी है, तो रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं होता है, और जब उसमें ग्रीड का छोंक लग जाती है, ग्रीड का मसाला कि मेरे पास ही हो, ज्यादा हो और हो, सुबह तक हो जाए, सुबह तक बंगला चार गाड़ी हो जाए, तो ये जो है बहुत भारी भयंकर प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम जो आपने कहा कि प्री कंडीशन नहीं इक्वलिटी हो, ये करने के लिए शुरू करना है हमने, और दोनों चीज होती हैं। और दूसरी बात मैं ये आपसे ये साझा करना चाहता हूं, जो बातें आई उभर के चैलेंज बताए सबने, और कुछ ये भी आया वे फॉरवर्ड एक्शन सेफ भी बताए कपूर साहब ने। मेरे ख्याल है हर सोसाइटी के अंदर टॉप 5% 7% लीडर्स होते हैं, बाकी तो फॉलोअर्स होते हैं 20%, और बाकी देखते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर हवा चल पड़ी पिक्चर सक्सेस हो गई तो हम भी पिक्चर देखने चले जाएंगे, ऐसा होता है। तो मैं ही कह रहा हूं कि अपने अपने लेवल पे चेंज बिगिंस विद योर सेल्फ, तो आप इससे कितने कन्विंस्ड हैं, आप इसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं, आप अपने स्थान पे अपने तरीके पे जो है शुरू करें। और एक्शन सेट में क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस की बात पढ़ाने, मैं 17 में प्रो वाइस चांसलर था, अब हमने 2012 में तो हमने स्पिरिचुअलिटी का पढ़ाया, पर खाली पढ़ाने से नहीं होता है, उसको आगे ले जाना। और बात यह है, सेकेंड चीज ये है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, घर में, घर भी यूनिवर्सिटी है, घर में, विद्यालय में, अपने कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट में काम करें, और सेकेंड संस्था में ये कोशिश करें, और पार्टनरशिप, ये SDG जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सारा ज्ञान मेरे पास नहीं है, मिलजुल के बढ़ाएंगे काम को तो आगे बढ़ेगी, तभी वसुधैव एक कुटुंब आएगा। और छोटा सा मैं एक पहलू और भी देना चाहता हूं, जो कपूर साहब ने भी टच किया, मैं TCS का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपको शेयर कर सकता हूं कि टेक्नोलॉजी जो टुडे है ये हमको सबको इकट्ठा बना रही है, और एनवायरमेंट जो है ये भी हमको सऊदी अरेबिया में कितनी भारी बाढ़ आ गई, क्यों आई, अमेरिकन के पास, पुराना माने छह को अमेरिकन बैठा भी हो, एक अमेरिकन के पास गाड़ी इतनी बड़ी होती है जैसे रेलगाड़ी का चकड़ा, हमारे पास छोटी नैनो आ गई, वो हमसे चार गुना ज्यादा, घर उनका इतना बड़ा। तो मैं कह रहा हूं हम तो, और पृथ्वी छोटी सी है,
तो इतना एनवायरमेंट का जो सस्टेनेबल का है मीनिंग, सस्टेनेबल मतलब क्या सभी 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 अंबानी अदानी बन जाएंगे, ये सस्टेन हो सकता है? एनवायरमेंट डूब जाएगा। तो उसमें क्या है, ग्रीड, ग्रीड ऑफ डिजायर। मैं एक्चुअली आप ज्यादा जानते हैं और सीखूंगा, ये जो धर्म के 10 लक्षण में होता है डिजायर कंट्रोल, डिजायर को मिनिमाइज करना, ये भी धर्म का भारी बड़ा भारी पार्ट है हमारे सनातन धर्म में। वो नहीं होगा तो कॉम्पिटिशन। अभी पांडव करो तो भाई थे ना, मेरा भाई आगे बढ़ गया तो उसको मैं काटने को दौड़ रहा हूं। तो कहना ये चाहता हूं कुटुंब भाईचारे की फीलिंग, कुटुंब की फीलिंग आने के लिए हमने अपने आप में काफी एक इंटरनल चेंज लाना है जो राजयोग से शुरू हो रहा है। इसको जाके हम प्रैक्टिस करें, इसको लेके जाएं, खुद को पवित्र बनाएं, खुद को उत्कृष्ट बनाएं, परमात्मा की तरफ जाएं, अपने रियल स्वरूप को पहचाने, उसको दूसरों को भी ये दें। मैं ये कहना चाहता हूं समरी में। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे से आपने समाप्त किया। कुछ क्वेश्चंस और भी आए हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस भी रखने, यदि आप अपने समाप्त करते वक्त इन प्रश्नों को ले सके कोई भी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बाधा है एक वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग लाने में? आप में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर यदि अपने में रखना चाहे तो भले रख सकता है। और कुछ प्रश्न ये हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग के लिए क्यों नहीं एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का कोर्स चलाना चाहिए, 2-3 प्रश्न हैं इसमें, वो भी आपने करीब करीब आंसर किए हैं। एक क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड गाइडलाइंस टू प्रोसीड टूवर्ड्स फॉलोइंग वसुधैव कुटुंबकम इन स्कूल एंड कॉलेजेस अलोंग देयर एकेडमिक्स। हमारी एकेडमिक के साथ साथ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कैसे कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए, इस पर कुछ बात करें। और एक आईडीजीज पे एक प्रश्न आया है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, क्या हमारे अपने अंतर के भी स्वयं के लिए भी इनर डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, और होने चाहिए तो क्या होने चाहिए, अपने विकास के लिए हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होने चाहिए क्या? मुझे लगता है अंत में गीता बहन इस बात को शायद आंसर करें कि जैसे दुनिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए गोल बनाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वर्तमान में हम इंसानों को भी, हम व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या हमें अपने गोल निर्धारित करने चाहिए, इनर डेवलपमेंट गोल, और क्या होने चाहिए यदि वो निर्धारित करें तो हमारे गोल क्या होने चाहिए? तो अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क जब गीता दीदी करेंगी तो इस प्रश्न को आप ले सकते हैं। ओवर टू जयदीप सर। जयदीप सर आप कंक्लूडिंग रिमार्क दें।
वसुधैव कुटुंबकम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, और यूनिवर्सिटीज में अभिचल सर ने सही कहा कि एनईपी के वजह से अलग अलग 2 क्रेडिट्स के अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो यूनिवर्सिटी में अभी उनके सिलेबस बनने जा रहे हैं। पहले भी हम लोग चला रहे थे, हम लोग तो 2012 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, यशवंत राव चौहान यूनिवर्सिटी। हम लोग डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन का चलाते हैं 2012 से। बहुत से यूनिवर्सिटी में 6 लाख स्टूडेंट्स हमारे होते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ ये डिप्लोमा के लिए जो बच्चा आएगा वही वैल्यू एजुकेशन यदि पढ़ता था। अभी ये प्रोग्राम्स हम लोग 2 क्रेडिट का करके जितने हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनमें सब में ये प्रोग्राम जाएगा। और सिर्फ थ्योरेटिकल या उनको सिर्फ पढ़ाना है इसके लिए नहीं, उनको जीवन में कुछ मूल्य ये करने के लिए, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम जो है यशवंत राव जी के नाम से है, तो यशवंत राव चौहान आप सब लोगों को पता होगा कि वो महाराष्ट्र के सीएम थे, इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, 28 सालों अलग अलग पदों पे थे, लेकिन उन्होंने एक जीवन में एक मूल्य, जो उनकी जब डेथ हुई तब उनके यहां उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 26,000 रुपए निकले, एक प्लॉट उनके नाम पे नहीं था, मकान उनके नाम पे नहीं, गाड़ी उनके नाम पे नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ 26,000 रुपए, जैसे अब्दुल कलाम जी है। तो ऐसे लोगों के मूल्य हम लोगों ने बच्चों तक लेके जाने चाहिए, और ऐसे सरल जीवन और वैल्यू एजुकेशन से भी आप लोग जीवन में क्रांति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का वसुधैव ये जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।
हाँ, अविचल सर अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क दें, और उसमें रिमार्क्स के साथ साथ एक आध प्रश्न और भी आया है, या तो पहले आप अपना एक बार बात कीजिए।
बोलता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन था। देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हर चीज के दो साइड्स हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हमें यह देखना है कि पॉजिटिव साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, नेगेटिव साइड लॉ विल टेक केयर, लेकिन वी शुड नॉट बी आइदर पार्टी टू द नेगेटिव साइड, आर शुड बी एक्चुअली इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट पार्ट। हमें इस चीज को इंश्योर करना है, वही चीज हमें बच्चों को समझानी। चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी से आप जिस तरीके जो डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट बनवा लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज कॉपी पेस्ट करके वहां से बनवा लें। आपको ये समझना है कि प्लेगरिज्म की क्या वैल्यू है, आपको ये समझना है कि कॉपी पेस्ट से कितना डैमेज हो सकता है सिस्टम। ये आप समझेंगे तो आगे प्रोपगेट कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब नई चीज आई है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग की लोग बात करें, थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करें। जब ये क्रिटिकल थिंकिंग आई थी, लोगों को लगा था ये मेजरेबल ही नहीं है, लेकिन लुक एट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आज आप प्रोग्राम्स देखिए, नीड ऑफ द आवर है, जहां पे आपको टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी एनहांसमेंट, सारी जगह आपको एआई की जरूरत, प्रिसीजन की जहां जरूरत पड़ती है आप एआई की तरफ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है वो इस तरीके से है। दूसरी चीज जो मतलब एंटायरली अप टू अस, दूसरी जो बात है जिसमें आईडीपी की बात, डेवलपमेंट प्लान की बात की गई, बाकी कोर्सेज के बारे में मैंने कहा कि एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तो आपके ऊपर है, आप कितनी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। डेवलपमेंट देखिए, पहले सरकार जब चलती थी फाइव ईयर प्लान आया करता था, ठीक है, हर ट्वेल्थ प्लान, टेंथ प्लान, इलेवंथ प्लान, अब अलग तरीके के प्लान आ रहे हैं। तो हर इवन वेन वी टॉक टूडे, वी मेक प्लान दैट नेक्स्ट ईयर वॉट वी विल डू। 100 डेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, नेक्स्ट क्या होगा, आगे अगले साल उसके क्या होगा, किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट होंगी। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये लगता है, और जो मैं फॉलो भी करता हूं, हर ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो मेक इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान। उस ग्रोथ प्लान में वो लिखे कि अगले 3 से 5, जब हम यूनिवर्सिटीज के लिए आईडीपी बनाते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, वो हम यूनिवर्सिटीज से बात करते हैं 5 साल 10 साल 15 साल बाद मैं क्या बनना चाहूंगा, क्या यूनिवर्सिटी बनना चाहेगी। लेकिन इसमें जो बार बार मेरी बात आ रही है, उसमें पैशन, आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज के मिशन में देखिए, विजन में देखिए, आई वॉन्ट टू बिकम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। आप उनसे पूछिए वॉट इज वर्ल्ड क्लास, नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग वर्ल्ड क्लास, लेकिन उस कम्युनिटी में जो उस कैंपस में रहता है उसको क्लैरिटी रहे कि वर्ल्ड क्लास का मीनिंग ये है, और हर बच्चा और हर टीचर और हर लीडर उस यूनिवर्सिटी का ये समझे कि मैं वर्ल्ड क्लास कैसे बनूंगा, तभी वो रियलिटी में कभी कन्वर्ट होगा। तो एक इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान जरूर बनना चाहिए, जिसमें बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ आपको उसमें देखना चाहिए कि आप उस प्लान में कब कौन सा टेंजिबल आउटकम होगा, वो आउटकम कैसे अचीव होगा, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और साथ में एक फॉल बैक ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू सम फेलियर, सम डिग्री ऑफ फेलियर। उस फेलियर से हम कितने स्ट्रांग आके बाहर रिकवर होते हैं, इज समथिंग इज लाइफ ऑल अबाउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके से चीजों को देखना चाहिए। जो समराइजेशन की बात थी, तो वो तो हमने सारी चीजें बात कर ली, और मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीजें गूगल में अवेलेबल है, आप सब भी उतने ही नॉलेजेबल हैं जितने हम हैं, लेकिन मैं समराइज दो ही लाइन से करना चाहूंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट्स मेक ए कमिटमेंट दैट वी विल लीड द चेंज। जो दूसरी है वो मैं फेवरेट लाइन है और हमेशा बोलता हूं और याद भी रखता हूं, नोइंग इज नॉट इनफ, इफ वी नो समथिंग वी मस्ट अप्लाई, सिमिलरली विलिंग इज नॉट इनफ वी मस्ट डू। थैंक यू वेरी मच।
हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए गीता दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज इस पूरी इस पैनल डिस्कशन के सार के रूप में बात रखें आध्यात्मिकता की, कैसे आध्यात्मिकता वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया में ला सकती है, कारगर हो सकती है।
वसुधैव कुटुंबकम की श्रेष्ठ भावना प्राचीन काल से हमारे देश के ऋषि मुनियों के मन में रही, परंतु आज प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आई, उसका कारण एक ही है कि हमारे पास मूल सनातन सत्यों का सही ज्ञान नहीं है। हर ऋषि ने अपनी साधना अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार और अपनी अनुभूति अनुसार बातें समाज के आगे रखी, इसलिए अनेक चिंतन हमारे सामने आए, अनेक शास्त्र बने, अनेक गुरु बन गए और अनेक धर्म संप्रदाय और मठ पंथ बन गए। अगर हमारे पास इन सनातन सत्यों का सही ज्ञान, जो परमात्मा ने हमें दिया है, जिसको लेकर के ये विद्यालय चल रही है और कार्य कर रही है, अगर वो मूल सनातन सत्यों का सहज ज्ञान हम अपनी बुद्धि में रखें और उसी के आधार पर हम अपने जीवन का गोल बनाएं, अपने कार्य का मूल आधार बनाएं, तो हम बहुत सुंदर श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा इन सत्यों को जीवन में ला सकते हैं या समाज को सिखा सकते हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये पांचों ही हमारी मूल बातें हैं जिसका ज्ञान तो हमें दिया गया लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कम लोगों ने धारण करके बताया। आज भी अगर शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा है जो चैतन्य के साथ काम कर रहा है और सभी क्षेत्र मशीन पेपर मनी से काम करता है, लेकिन आपका कार्य चैतन्य मनुष्य आत्माओं से है, अगर इन सत्यों को आप अपने जीवन में लाकर फिर विद्यार्थियों के आगे अपने आप को पेश करेंगे तो उन लोगों को भी बहुत सहज होगा। इस विद्यालय में जो हमें रिजल्ट मिला है उसका कारण यही है कि हमारे बाबा मम्मा, हमारी सभी दादियां, हमारे आदि रत्न, आदि सेवा रत्न इतने आदर्श रहे जो उनको देखकर आज तक हम चल रहे हैं और अपना जीवन भी ऐसा बना के भाई बहनों के आगे रख रहे हैं। तो ये बात है कि आप सभी टीचर्स हैं। अगर आप ही डॉक्टर बनाते हैं, आप ही इंजीनियर तैयार करते हैं, आप ही एडवोकेट तैयार करते हैं, लेकिन अगर हम पहले उसको सच्चा मानव बनाएं, संपूर्ण मानव बनाने की शिक्षा अपने कर्मों के द्वारा दें, तो वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। हम मूल्य सिखा नहीं सकते हैं, मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे कर्म व्यवहार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा अगर हम ये मूल्य सिखाएंगे तो जरूर बच्चे सीख सकेंगे। ये मेरी राय है। ओम शांति।
ज्यों केले के पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात बात में बात। बात करते जाएंगे तो निकलती जाएगी और निकलती एक एक मूल्य ऐसे लगता है कि रत्नों के समान चीजें, बात चलती ही रहे। और बात बात में ही मैंने देखा प्रश्न जो आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बात बात में ही निकल गया। जैसे एक क्वेश्चन आया था इनर डेवलपमेंट गोल, और इनर डेवलपमेंट गोल का आंसर निकला। ऐसे ही एक प्रश्न आया था कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में नैतिक बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दीदी जी ने ऑलरेडी उसका भी आंसर कर दिया कि अध्यात्म और इंसान बदलने की बात है। जब इंसान बदलेगा तो दुनिया की हर व्यवस्थाएं बदलेगी, चाहे वो राजनीति की व्यवस्था हो या दुनिया की कोई और व्यवस्था। इसके साथ ही एक प्रश्न आया कि स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ शारीरिक श्रम, उसको भी क्यों न जोड़ दिया जाए। पर जो हम देखते हैं ज्ञान सरोवर के चारों तरफ निकल के कितनी मेहनत और खूबसूरती के साथ अध्यात्म को इसके बीच में संजोया और समाया गया है, तो लगता है कि अध्यात्म का और श्रम दोनों का संयम हम यहां देख पाते हैं। तो ये भी साथ साथ हमें पता लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम करें, उससे पहले आपको एक अच्छी खबर भी देनी है। और अच्छा समाचार ये है कि रात को 8:30 से 9:30 बजे तक क्या होगा, कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप सब लोग समय पाएं अवश्य पधारें, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। और आप में से क्या कोई ऐसे भी हैं जो अपना भी कुछ रखना चाहते हैं अपनी कल्चरल प्रोग्राम में? एक हाथ खड़ा हुआ है, और कोई और है? 1, 2, 3, 4 हाथ खड़े हुए। तो आप में से जो भी हैं, जीतू भाई जी हमारे उस कॉर्नर पे बैठे हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा, वो सही स्थान पर आप तक की आपकी सारी सूचना आप तक पहुंचा देंगे। और जो भी घूमने जाना चाहते हैं वे सभी अभी भोजन के बाद आबू दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए हम लोग अब पहले 2 मिनट ईश्वर की स्मृति के साथ इस सेशन को यहां समाप्त करेंगे। एक और इंस्ट्रक्शन है? अच्छा चलिए हम लोग ईश्वर को याद करें इससे 1 मिनट पहले, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। हम अपने मेहमानों को, हमारे साथ साथ जो पैनलिस्ट हैं, उन सब का सम्मान करना चाहेंगे, उन सबको थैंक्स कहना चाहेंगे बाबा के घर से, ईश्वरीय घर से एक छोटी सी सौगात के साथ में। तो हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर अविचल कपूर जी को सम्मानित करेंगे शॉल ओढ़ाकर। डॉक्टर अविचल कपूर जी और सम्मानित कर रही हैं हमारी आदरणीय, हमारी प्यारी आदरणीय गीता बहन जी। और एक ये सुप्रीम सोल का सिंबल वसुधैव कुटुंब के कम के भाव को दर्शाता, ये सिंबल सारे संसार का पिता एक है ये बताता, ये सिंबल निराकार शिव पिता परमात्मा का ये प्रतीक चिन्ह आपको गया है। साथ साथ बाबा के घर से प्रसाद आपको दिया जा रहा है। हमारे साथ साथ हैं आदरणीय डॉक्टर जयदेव निकम सर, उनका भी शाल ओढ़ाकर सम्मान करते हुए हमारे आदरणीय गीता बहन जी। और सुप्रीम सोल का ऑलमाइटी गॉड शिवा का सिंबल हमारे साथ में है कमांडर भूषण दीवान जी, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। तो आज ये सेशन पैनल डिस्कशन खत्म हुआ। पैनल डिस्कशन के इस खत्म होने के साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस का भी आखिरी सेशन है ना। आप में से कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इस कॉन्फ्रेंस के एंडिंग पे कोई अपना अनुभव या कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, बहुत ज्यादा तो नहीं, कोई एक या दो आप आना चाहते हैं? और भी कोई एक आना चाहिए, एक या दो, एक फीमेल में से कोई आ जाए? अच्छा आप निकलेंगे दीदी। हाँ आइए,
शेयर करना चाहता हूँ
जी। नहीं आप ऊपर आ जाइए, आप कॉन्फ्रेंस के 3 दिन के उस पे समरी पे आप कुछ शेयर कर रहे हैं, है आइए।
माइक क्या?
हाँ अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन पे बात नहीं कर रहे, हमारा जो 3 दिन का जो फीडबैक है उस पे आप कॉन्फ्रेंस पे फीडबैक दे रहे हैं।
द कॉन्फ्रेंस थीम जो थी हमारी वो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द स्पिरिचुअल एजुकेशन। और इस तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वो मुझे लगता है कि एक यूनिक टाइप थी ये। मैंने कभी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस नहीं की थी। मेरे 35 इयर्स की जो सर्विस थी उसमें मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की जिससे यूजीसी फंडिंग जनरली करती है।
एक बार आप ऑडियंस को एड्रेस कीजिए।
मगर दिस इज वेरी यूनिक काइंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस दैट आई हैव अटेंडेड। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे मुझे लगता है कि मेरी जैसी फीलिंग्स है वैसे सबकी होगी कि ये हमारे उत्थान के लिए भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि यहां से हम जो चीज लेके जा रहे हैं हमारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में उसका बहुत सारा जो फायदा है वो अपने बच्चों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि हमारा जो इनर स्पिरिट जो है वो उससे जागृत हुई है, ये मेरा मानना है। और मैं श्री अविचल कपूर जी से दरखास्त कर रहा हूं, मैं आपको विनंती कर रहा हूं कि अगर ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है इनके साथ अगर यूजीसी ने कुछ अगर एमओयू कैन से एमओयू करती है तो हमारे आज सिस्टम में जो 25 से लेकर 35 एज ग्रुप के जो टीचर्स हैं उन लोगों में एक तो उनकी समझ शायद हमारे संविधान के लिए कम है या फिर उनकी पढ़ाई कम पड़ रही है, तो उनको अगर जो वसुदेव कुटुंबकम का सही मानना है, सही अर्थ जो है कि जो विविधता है, विविधता तो बहुत सारी बातों में रहती है, तो ये विविधता हम एक्सेप्ट करें, वो विविधता एक्सेप्ट करने के लिए अगर ब्रह्म कुमारी के साथ इस संस्थान के साथ अगर यूजीसी को एमओयू कर ले और हमारे हरेक टीचर्स को ये जो विचार है वो अगर हरेक टीचर्स को अगर समझाए, एक पार्ट ऑफ करिकुलम उनका कंपलसरी कर दे, तो मुझे लगता है कि सही मानने में हमारे स्टूडेंट्स को भी ये वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो समझा सकते हैं, और वो समझाने के लिए सिर्फ ब्रह्म कुमारी यही एक संस्था मुझे अच्छा लगता है कि वही वो कर सकते हैं। थैंक यू
वेरी मच। और भी कोई अपने इसमें विचार, एक व्यक्ति कोई और रखना चाहिए क्या प्लीज?
इसमें ये है कि हम करने क्या आए थे, पहले तो जो आपने कहा अनुभव, उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूं, कुछ प्रश्न थे उनको पूछने बताने आया हूं, पले बड़े इन्हीं ब्रह्मा कुमारी के संस्कारों में, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूं, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूं। 98 में पिताजी पहली बार लेकर के आए थे, उसके बाद आते रहे। सर ने एक बात कही कि हम इक्वेलिटी बच्चों की, सिर्फ ये जो पूरा स्पिरिचुअल एजुकेशन है बस दो ही बच्चों पे बेस है, अगर वो अंतर कम कर पाए, एक वो बच्चा जिसको मैं खाना खिलाता हूं, एक वो बच्चा जो मेरे को खाना खिलाते हैं, अगर उस अंतर को एज अ टीचर कम कर पाए। उच्च शिक्षा तो बहुत दे दी यूजीसी ने, लेकिन उत्तम शिक्षा भी हो, जो आप बहुत सारा विषय था, क्योंकि जीवन चलाने के लिए ठीक है, जीवन को चलाना है, बचाना है, बढ़ाना है, लेकिन इन मूल्यों को अपनाना भी है। तो ये जो हमारी ज्ञान परंपरा की बात हम करते हैं, और यहां पे सिर्फ यही पर्पज था हम सबका, बुद्ध भी बने लेकिन उसके साथ शुद्ध भी बने, प्रबुद्ध तो हैं हम लेकिन बुद्ध और शुद्ध भी बने, ताकि वही चीज हमारे फिर स्टूडेंट्स में भी आए। और वही जब हम विद्या की बात करते हैं, विद्या में वाणी वपु वित्त जो स्किल की बात कर रहे थे आप, वेश, लेकिन यहां से विनम्रता भी आ जाए, वो धैर्यता भी आ जाए, तो शायद कहीं ना कहीं हम उस बीके के मंत्र को, हमारे चरण यहां पे आए हैं लेकिन इनकी शरण भी अगर मिल जाए तो हम इसको मूल्यों को अपना सकते हैं। तो यही हमारा संपर्क और संबंध इनसे बना रहे। संपर्क होता है पानी और तेल का अलग अलग दिखता है, लेकिन संपर्क से आगे संबंध बने। संबंध क्या है? दूध और पानी अलग अलग नहीं होते। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्पिरिचुअलिटी अगर दोनों मिल जाए तो हमें फिर वसुधैव कुटुंबकम की, और सर आप एसडीजी की बात कर रहे थे, एसडीजी तो 2000 में एमडीजी फिर एसडीजी, लेकिन 1987 में बटलैंड कमीशन आया, उसने कहा था एनवायरमेंट फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट, एक रिपोर्ट है उसमें ये उस एसडीजी यूज होने लगा, लेकिन मेरे तो हजारों साल ऋषि ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम
जी,
हमारी तो वो परंपरा है, बस उसको शिक्षा के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो यही हमारा टेक अवे होना चाहिए, यहां से हम सारे लोग मिलकर के कि किस तरह से हम इन आध्यात्मिक मूल्यों को अपनी शिक्षा में ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अगर फॉर्मल एजुकेशन होगी गले में मेडल डलेगा, लेकिन शिक्षा के साथ अगर ये वैल्यू या दीक्षा जुड़ जाए तो वैल्यू अकेले मॉडल मेडल नहीं, मॉडल्स भी तैयार होंगे जो समाज को दिशा देंगे, तो वो मॉडल्स की भी हमें जरूरत है, दरकार है। तो इसी तरह के प्रोग्राम यूजीसी के कपूर साहब बैठे हैं और उनसे अनुरोध की इसी तरह के प्रोग्राम हम अवेयरनेस के लिए टीचर और स्टूडेंट्स के बहुत सारे एमओयू करके हम कर सकते हैं और करेंगे भी, हमारी उम्मीद है यूजीसी, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत जरूरत है। और जब भारतीय ज्ञान परंपरा की और नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, हमने वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लीडर नहीं बनना, नॉलेज पावर पे बनना है, तो वो नॉलेज पावर उस स्पिरिचुअलिटी के साथ, सो इन्हीं शब्दों के साथ कि ब्रह्म कुमारी वाले फिर बुलाएंगे कभी ना कभी, फिर हम आएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी।
वेलकम सर। आखिर में एक और बहनों की तरफ से कोई आना चाहे तो भाइयों ने काफी अच्छा, आइए आप आइए, ये आखिरी फीडबैक लेंगे और अपनी बात को शॉर्ट में रखें और पूरा तीन दिन के कॉन्फ्रेंस पे अपनी बात रखें।
ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन एंड ऑफ द डायस एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग हियर। Thank you to the Brahma Kumari Education Wing for organizing such a wonderful event. And Anchal Kumar, sorry, Kapoor ji ne abhi hume bola hai ki aap sab yahan se catalyst ban ke jana hai. To that is a bahut badi zimmedari jo hum par di hai. Jaise Jaydeep ji ne bataya ki jo ideals jo hamare aage the, wo humko what do you call exponentially badhane hain. And we play an important role in expanding that that idealism. And abhi jo thought lab ki kal baat hui thi, so already we have initiated the process. I have had a word with Srinagar Institute of Technology, and so I'm hopeful that with all the information and brochure in hand, we'll be able to take some things forward as expected. And once again, nice meeting everyone. And wish everyone all the very best. Thank you so much.
Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वर्कशॉप के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए। आप इतनी इतनी दूर से आप आए, धन खर्च करके भी आए, समय और श्रम भी आपने लगाया है। अब आप आराम से इसको एंजॉय भी करें, भोजन के बाद आप आपू दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। एक छोटा सा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस स्केल पर कुछ मुझे जहां तक ध्यान लगता है एक टूल है, इसका पहला पार्ट आपका हो चुका है प्री, और ये एक और करना चाहते हैं तो अभी पांच में प्रोग्राम के एंड में जो भी रुकना चाहें पांच सात मिनट के लिए रुक करके स्पिरिचुअल हैप्पीनेस स्केल, इस पे बात करेंगे हमारे राजेश अरोरा जी। और एट द एंड आप लोग यहां से जाने के बाद में कनेक्ट जरूर रखना, नहीं तो जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं वो सारी बातें समय के साथ धूमिल पड़ने लगती हैं। सेंटर जरूर जाएं। भारत में लगभग मुझे जहां तक ध्यान है 8000 से ज्यादा ऐसे सेवा केंद्र हैं, सेंटर्स हैं, अपने अपने स्थानों पर जाके वहां पे स्पिरिचुअलिटी से यदि कनेक्ट रखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी इज द कोर टूवर्ड्स वैल्यूज, वैल्यूज के लिए कोर का काम करती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात भी आगे बढ़ेगी और जीवन चेंज होगा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अच्छा, फॉर बीके इवेंट्स इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ऑन 9414003961, नेम कॉलेज और प्लेस लिख करके मैसेज करें। ये मैसेज आपको फॉर बीके इवेंट्स इन्फॉर्मेशन, बीके ब्रह्मा कुमारी इसके इवेंट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9414003961, इस पे अपना नेम कॉलेज एंड प्लेस ये लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम कॉलेज का नाम और प्लेस लिखकर मैसेज कर सकते हैं। नंबर इज 9414003961। ओम शांति।